같은. 아우즈 빌라히 미네 쉐이탄일 라인 라짐. 비스밀라히 르라흐마니 르라힘. 알함두릴라히 와 카파 와 살람운 알라 이바디히 알라디나 스타파. 두루드 베지 무함마드 와 알리 무함마드. 아직 ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ بہت زیادہ علماء کو پریشان اس سلسلے میں کیا جاتا ہے اور اکثر افراد تو کافی رات گزرنے کے بعد بھی فون کرتے ہیں اور رات کے تین چار بجے استخارہ کروانے کے لیے تنگ کرتے ہیں انہیں. دیکھیں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ الامور و ثلاثہ, دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ان کی تین قسمیں, امر بین رشدہ, بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رشد والا ہونا, ہدایت والا ہونا بالکل واضح ہوتا ہے, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جن کا برا ہونا وہ بالکل واضح ہوتا ہے, انسان 2 جمع 2 4 کی طرح سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں والامور بین ذلک, جو ان کے درمیان کے ہوتے ہیں, انسان شک و شبے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں. تو یہ اب اس شک و شبے کے مرحلے سے انسان کیسے نکلے, یہ تذبذب کی حالت کو وہ کیسے ختم کرے. ہر جگہ مکمل آواز آ رہی ہے آپ کو, تو تھوڑی سی وہاں باہر جا کے کہہ دیں کہ آواز بڑھا دیں. تو زندگیاں اسی طریقے سے ہم سب کی شک و شبے کے اندر گزر رہی ہیں, اور یہ جو ہر وقت کے شکوک شبہات اور اپریہینشنز کی جتنے بھی ہوتی ہیں, یہ آپ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ زیادہ تر کمزور ایمان اور کمزور ارادے کی وجہ سے ہوتی, جس کی ایک بہت بڑی وجہ اس وقت میں نے ذکر کی تھی کہ جس وقت گانے اور موسیقی کے فقہی مسائل بیان ہو رہے تھے تو امام خمینی کا قول میں نے نقل کیا تھا کہ انسان کے ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بنانے والی جو چیز ہے وہ گانا اور موسیقی, اور جتنے بھی انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یقین اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک دفعہ اس سے پہلے بھی مثال آئی تھی کہ آیت اللہ حسین بروجردی, ان کو پوری زندگی میں کبھی شکیات نماز کا, کوئی یہ شکیات وضو کا کوئی مسئلہ کبھی پیش ہی نہیں آیا, ایک دفعہ بھی پیش نہیں آیا. ایمان کے اعتبار سے جتنا انسان قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ شکوک و شبہات کا میں گرفتار نہ ہو. جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے شک کم ہو جائیں. یا تو عمار یاسر کے متعلق تھا, یہ مقداد کے متعلق مجھے یاد نہیں, کہ انہیں کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی شک اور وسوسہ کبھی نہیں آیا. تو بہرحال یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان درمیانی کیفیت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں, اس کے لیے جو اس قسم کے جو وسواس اور شک ہوتے ہیں, خاص طور پر آیت اللہ بہجت کا پچھلی دفعہ بھی میں نے قول نقل کیا تھا, اب موقع آ رہا ہے بیچ میں تو تذکر ہو جائے اس کا. وہ فرماتے ہیں کہ حوقلہ اس سلسلے میں بڑا مفید ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یہ بہت مفید ہے. اس کی انسان اگر کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے تو وہ شکوک و شبہات کے اس جنگل سے باہر آ سکتا ہے. और अपने यकीन में इंसान जितना इजाफा करेगा उतना ही तरद्दुद और तजब्जुब कम होता जाएगा। इसके लिए आप यकीन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है आयतुल्लाह दस्ते गैब शिराजी की किताब यकीन, यकीन के नाम से मार्केट में उर्दू में भी अवेलेबल है और बहुत अच्छी किताब है और उसमें अपने यकीन को बढ़ाने के तरीके जिक्र हुए तो वो आप जरूर उसमें देख लीजिएगा। बहरहाल उसमें एक तरीका है, ख्वातीन के यहाँ तो बहुत कम इसकी वो हो पाती है, मौके नहीं मिलते, और वो है नमाज जमात में शरीक होना। नमाज जमात में शरीक होने से इंसान का यकीन जो है वो बढ़ता है। अच्छा, जितना अमल आपका बढ़ेगा, जितने आप इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होंगी उतना आपका यकीन बढ़ता जाएगा, जितना आप गुनाहों से दूर होंगी उतने शक कम होते चले जाएंगे। अलबत्ता ये जो कभी कभार शक और वसवसे आते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़ोफ़े ईमान की हमेशा निशानी नहीं होते, ये बात याद रखिए। अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पर काफिराना किस्म के जो शक और वसवास आते हैं जिससे हमें डर महसूस होता है कि कहीं हम काफिर तो नहीं हो रहे हैं इस किस्म के ख्यालात से। तो ये बात याद रखिए कि बहरहाल जहाँ पर भी आपको पता है कि मीठी चीज़ होती है शहद की मक्खियाँ या मक्खियाँ, उस जगह ही के ऊपर ज़्यादा आती, तो जहाँ दौलत ईमान होगी वहाँ शैतानी वसवसे भी ज़्यादा आएंगे। शैतान चाहता है कि किसी तरीके से आपकी दौलत ईमानी को ज़ाया करे, यही वजह है कि काफिर को और मुनाफिक को कभी भी वसवास और इस तरह की शक नहीं आती। और जब भी, यही वजह है कि हमारे जो शकूक और वसवास होते हैं इस पर हमारा कोई मुआवजा भी नहीं किया जाता। अलबत्ता एक ख़ास बीमारी की हद तक बात ना बढ़ जाए तो फिर तो अपना इलाज करवाना होता है। जैसे मैंने एक दफ़ा आप लोगों की खिदमत में पहले अर्ज़ किया था कि जान पहचान वाले थे मेरे, इतना ज़्यादा शक बढ़ गया था उनका कि बाथरूम भी जाते थे तो बाज़ोकात बाथरूम के पूरे फुल बूट पहन के जाते थे और फिर भी कहते थे छींटे पड़ गई। फिर उन्होंने दो कुर्सियाँ रखनी शुरू कर दी, उन पर पाँव रख के उस पर बैठ के कहते थे कि तब भी मेरे पाँव पर निजासत के छींटे जो है वो आ गए। तो बहरहाल उलामा ने उसको यही हल बताया कि जहाँ कहीं गंदा पानी नज़र आए उसी के अंदर से होते हुए जाएं, बचते हुए ना जाएं, किसी मकान पे से पानी टपक रहा है उसके नीचे से होकर गुजरें, किसी तरीके से शक की बीमारी ख़त्म। और बहुत से अफराद से तो बजाते खुद मिला हूँ और अभी तक मेरे पास वो आते रहते हैं। और बहरहाल वो ये है कि कई दफ़ा अपने निकाह तक पढ़वा चुके हैं इस ख्याल में कि जो है कि मैं काफिर हो गया, मेरी बीवी निकाह से मेरे खारिज हो गई, सिर्फ इन शकूक शुबहात और वसवास की वजह से। अच्छा, अब इस शकू को शुबहात और वसवास से हम अपना पीछा कैसे छुड़ाएं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका आगे चलकर इस्तेखारे का भी जिक्र होगा जो हमारी मेन जिस पर आज गुफ्तगू होगी। और आप देखेंगे कि आवाम के अंदर इतनी ज़्यादा इस मसले में गलत फहमियाँ हैं कि ये मसला कुछ का कुछ बन गया। इसकी तफसील अभी आगे चलकर आएगी और उलमा के महाराजे के फतावे भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो ये जो दरमियानी कैफियत में जब हम गिरफ्तार होते हैं कि हम इस काम को करें या ना करें, कोई काम हमें दरपेश है, शादियों के सिलसिले में हम तफसील से भी आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे कि किस अंदाज से ये मसला इंतहाई ख़तरनाक नौयत इख्तियार कर गया है सिर्फ और सिर्फ जहालत की वजह से, अभी उसके मुतालिक भी आगे चलकर गुफ्तगू आएगी। तो इन दरमियानी कैफियत से हम बाहर कैसे निकलें, तजब्ज़ुब और तरद्दुद की हालत को हम कैसे ख़त्म करें, इसके बहुत सारे तरीके जो है वो बयान किए गए हैं कि इंसान बाज़ औक़ात मुख्तलिफ चीज़ों को फिर इस्तेमाल करता है जो भी आगे चलकर जिक्र होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये है कि इंसान अपने तकवे से फैसला करे, अपने तकवे से, कि जो सूरह आराफ़ की आयत भी है कि इन्नल्लज़ीना तक़ू इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़ाइज़ाहुम मुबसिरून। जब भी वो अफराद के जिनके पास तकवा मुकम्मल है, जब भी शैतान की तरफ से इनके पास कोई चीज आती है, शैतान की तरफ से कोई चीज आती है तो तज़क्करू इन्हें याद आ जाता है, फ़ाइज़ाहुम मुबसिरून इनकी आंखें खुल जाती। इसका मतलब ये है कि तकवा ये खुद हमें दरमियानी कैफियत से निकाल सकता है। देखिए जब भी हम शकू को शुबहात का शिकार होते हैं ना कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, तो 50% हमारा ख्याल शैतानी होता है, 50% ख्याल रहमानी होता है। तो ये जो इस तरह की जो जब हमें चीज़ें आती हैं तो हमारा तकवा खुद आगे बढ़कर हमारी मदद करता है। इन्नल्लज़ीना तक़ू इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतान, کہ جب بھی شیطان کی طرف سے ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے، کوئی اس قسم کا خیال آتا ہے، تذکرو، انہیں یاد آ جاتا ہے صاحبان تقوی کو، فائزہ ہم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو تقوی خود بخود ہمیں ایک ایسی چیز مہیا کرتا ہے کہ جس سے ہم اس درمیانی کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو جتنا انسان قوی کرے گا، جیسے ابھی گفتگو میں ذکر ہوا، اتنا ہی اس کو شکوک و شبہات اور تردد اور تذبذب کی جو کیفیات ہیں ان سے باہر نکلے گا. اچھا، پھر تقوی کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں. کہا جاتا ہے ایک تقوی عام ہے، ایک تقوی خاص ہے، ایک تقوی خاص الخاص ہے. تین قسم اقسام کہی جاتی ہیں. تقوی عام تو یہی ہے، اور جو کہ خود بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ بھی، کہ مثلا ہر واجب پر عمل کرنا اور ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی عام. آپ کہیں گے یہ تو بہت خاص ہے. نہیں، یہ تقوی عام ہے. ہر مومن کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ تمام واجبات پر عمل کرے اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. امام خمینی فرماتے تھے، ایک سوال اٹھتا ہے بعض اوقات دماغوں میں کہ کیا یہ ممکن ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ پوری زندگی میں ایک حرام کام بھی نہ کرے؟ تو امام خمینی نے اس کا جواب دیا کہ یہ محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ہے. محال عقلی کیا ہے؟ یعنی عقلاً پاسبل ہی نہیں ہے. تو پروردگار ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جو عقلاً پاسبل ہی نہ ہو آپ کے لیے. ہاں، محال عادی ہے، عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا کہ ہم سے گناہ نہ ہو. البتہ ایسے افراد اب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک بھی گناہ نہیں کیا، حتیٰ کہ مکرو کام بھی نہیں کیا. پچھلے کتابچے میں غالباً شیخ بہلول، پچھلے کتابچے میں شاید آیا ہے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مکرو کام بھی نہیں کیا. تو بہرحال یہ خاص ایک ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی عام. دوسری کیٹیگری جسے تقوی خاص کہا جاتا ہے. تقوی خاص کیا ہے؟ جس میں تمام مستحبات پہ بھی عمل ہوتا ہے اور تمام مکروہات پر عمل ہوتا ہے. تمام مکروہات سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی مستحبات و مکروہات کی پابندی، مکروہات سے بچنا اور تمام مستحبات پر عمل کرنا، اسے کہا جاتا ہے. اب یہ تقوی خاص ہو گیا. اور پھر تیسری کیٹیگری کہلاتی ہے تقوی خاص الخاص، جس میں مباحات کو بھی ترک کیا جاتا ہے، مباح چیزوں کو بھی انسان ترک کرتا ہے، یا اس کو نیت ہمیشہ پروردگار عالم کی بنا کے ہر مباح کو مستحب کاموں میں کنورٹ کرتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی. یہ تقوی خاص الخاص ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، ہمیشہ جو بھی ہمارے علماء اور مراجع، یہ ہمیشہ بچپن ہی سے تقوی و پرہیزگاری کی، ایسے کوئی ان کا ایسا نہیں ملتا کہ جیسے کہ ہم دوسرے مکاتب فکر میں دیکھتے ہیں کہ جناب کل تک تو اسی طرح سے پھرتے تھے، فلاں فلاں چیز کرتے تھے. اپنے انٹرویوز میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا لیکن پھر مجھ میں انقلاب آیا، میں تبدیل ہوا. وہ ٹھیک ہے، اس قسم کے افراد اوپر آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے جو خاص طور پر جو مرجعیت ہے اور علماء ہیں ہمارے، ان کی خصوصیت ہے کہ بچپن ہی سے، جوانی ہی سے ایسا بے داغ ماضی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر انسان کو دلی طور پر یقین ہوتا ہے، ان کی علم کے متعلق بھی، ان کے تقوی و پرہیزگاری کے متعلق. مثلا جتنے بھی ہمارے علماء اور مراجع اس طرح سے آغا بہجت ہیں، امام خمینی ہیں، بچپن سے لے کر، یعنی کہا جاتا تھا کہ جوانی میں جب شادی ہونے والی تھی امام خمینی کی، تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ رشتے لڑکی والے ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ لڑکا اسلامی معاملات میں بڑا سخت ہے. یعنی اسلامی چیزوں کے اوپر، یعنی بعض اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی اسلام پہ اس طرح سے اتنی شدت کے ساتھ اگر کوئی عمل کرنے والا، لیکن پھر دیکھا کہ پوری دنیا میں کیسا وہ انقلاب لے کر آئے. آیت اللہ خوئی اور ان کے جو شاگرد ہیں، کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے فقط دو اپنے شاگردوں ہی کو، حالانکہ بہت بڑی تعداد، جتنے آیت اللہ خوئی کے شاگردوں کی تعداد ہے اس میں اجازہ روایت فقط دو، سمجھے یہ کہ اجازہ روایت یا اجتہاد کی جو سند ہے وہ صرف دو افراد کو دی گئی، کہ آیت اللہ سیستانی کو آیت اللہ خوئی نے دی تھی، اور ایک شیخ حسین ہلی کو دی تھی. اجازہ روایت فقط دو کو دیا آیت اللہ خوئی نے، جو اس لحاظ سے ایک بڑے محتاط بھی تھے. تو بہرحال اس میں ہمیں خاص طور پر یہ دماغوں میں رکھنا ہے کہ ہماری جتنی بھی یہ سب چیزیں ہیں، ہمارے جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ تقوی و پرہیزگاری کے لیے اگر استعمال ہو. جب ہی کہا جاتا ہے، قرآنی آیات بھی ہیں، کہ ہماری جو سننے کی طاقت ہے، ہماری جو دیکھنے کی طاقت ہے، اور ہمارا جو دل جو ہے، اولائکا کانا مسئولہ، یہ سب جواب دہ ہیں، پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کے متعلق قیامت میں. तो इन सबको इंसान पाक करने की कोशिश करे, तकवा परहेजगारी हासिल करे, तो इसका आम जिंदगी में भी एक फायदा ये होगा आपको कि आप इस किस्म के जो तरद्दुद की कैफियत में हैं और यह फैसला नहीं कर पाती चीजों में, वो आप उस कैफियत से निकल आएंगे और आपका तकवा खुद बता देगा कि आपको क्या करना है। ये खुद ब खुद ये आपको आप इसका फैसला कर सकती। बाकायदा जो फजाइलुस सादात है, एक किताब है, उसमें मिस्र के एक लोहार के मुतालिक तफसील बयान हुई है कि लोग हैरान होते थे वो भट्टी में से पिघला हुआ लोहा हाथों में लेकर उठा लेता था और उस पर आग असर ही नहीं करती थी। पिघला हुआ लोहा जो लाल अंगारा सुर्ख हो रहा होता है, लोगों ने उसको कसम देकर पूछा कि तुम बताओ कि ये चीज तुम्हें कहां से हासिल हुई, ये किस तरह से तुमने। उसने कहा कि अपने नफ्स की मुखालिफत करने की वजह से और एक खास एक तकवा और परहेजगारी के एतबार से। जब एक मौका जिंदगी में उसके आया था जिसमें उसने एक अखलाकी गुनाह का इरतकाब करना चाहा था, तो वो खातून जो उसके पास फंस गई थी किसी वजह से, उसने कहा कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें दुआ देती हूं कि परवरदिगार तुम्हें इस दुनिया में भी और आखरत में भी आग से महफूज रखे। बहरहाल खौफ खुदा और तकवे परहेजगारी से उसने काम लिया, औरत को जाने दिया। उस रात को जब वो सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि एक मोहतरम खातून आई है जिनके सर पर याकूत का एक ताज है और उन्होंने आकर कहा कि ऐशस तुझे खुदा जजाय खैर दे, तूने बहुत बड़ा काम किया है। उस शख्स ने पूछा कि आप कौन है। कहा मैं उसी औरत की माँ हूं जो कल तेरे पास आई थी और तूने उसको जाने दिया था। उसने कहा कि अब मैं तुझे दुआ देती हूँ कि खुदा तुझको दुनिया और आखरत की आग से महफूज रखेगा। मैंने कह रहे हैं कि मैंने ख्वाबी में उससे पूछा कि वो औरत कौन थी। कहा कि वो औरत जुर्रियत रसूल में से थी, यानी सादात में से थी। ये सुना तो कहते हैं कि मैं ख्वाबी में खुश हो गया और उसके बाद ख्वाबी में उसी वक्त जब उस औरत ने कहा कि वो मेरी बेटी थी और जुर्रियत रसूल में थी, तो कहते हैं कि मैंने ख्वाबी में देखा कि मुझे वो आयत याद आ गई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नींद से मैं बेदार हुआ, नींद से बेदार हुआ, वो दिन है और आज का दिन है, आग इस दुनिया में भी मुझ पर असर नहीं करती उस गुनाह से बचने की वजह से, और मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार आखरत में भी जहन्नुम की आग से मुझे महफूज रखेगा। तो आपने ही देखा कि बहरहाल सिर्फ तकवा और परहेजगारी से अगर इंसान काम ले तो इस दुनिया ही के अंदर करामतों का जहूर होने लगता है। तो ये तो बहुत छोटी बात है कि आप तरद्दुद और तजब्जुब की हालत में मुख्तलिफ आप कैफियात से आप बाहर निकल आए और यकीन की हालत में आमाल को अंजाम दें ताकि जिंदगी में कोई गलत फैसला आपसे ना होने पाए। इसी तरीके से सिर्फ यही नहीं, बीच में क्योंकि हमारी आज तवील गुफ्तगू होगी और समा खराशी के लिए पूरे 3 घंटे मैं ही आपकी खिदमत आज करूंगा, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप के सामने पेश करते जाएंगे, जो बहुत से मसले हैं वो हल होते जाएंगे, कि सिर्फ गुनाह का इर्तिकाब ही नहीं, सिर्फ गुनाह का फकत इरादा करना भी आपकी रूहानियत में असर रखता है। सिर्फ गुनाह का इरादा करना भी ऐसे असरात रखता है। पैगम्बर इस्लाम की वो जो एक मशहूर हदीस है ना कि दो मुसलमान जब आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, तो लड़ते हुए बल्कि पैगंबर ने कहा कि अगर दो मुसलमान आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर तलवार निकालें और उनमें से एक मुसलमान कत्ल हो जाए और एक बच जाए तो कातिल और मक्तूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह कातिल का तो समझ में आता है कि भाई उसने कत्ल किया वो जहन्नुम में जाएगा, मक्तूल क्यों जहन्नुम में जाएगा। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि उसने भी अपने साथी के कत्ल का इरादा किया था, तलवार निकाल के लड़ रहा था, वो तो उसका पहले वार चल गया तो इस वजह से मारा गया, वरना इसका इरादा भी उसको कत्ल करने का था, किसी वजह से अपने इरादे की वजह से मक्तूल भी जहन्नुम में जाएगा। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिनका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि आइंदा, बल्कि ये होता है कि जब कभी भी आप इस दुनिया में आप देखती हैं ना, बहुत से लोगों को शकुशुबहात इस सिलसिले में भी आते हैं कि काफिर कौन से ऐसे गुनाह हैं जो काफिर नहीं करते। हम देखते हैं उनकी दुनिया तो फिर भी बड़ी अच्छी, तो परवरदिगार ने ये बात याद रखी रख लीजिए कि सिर्फ ये सहूलत मोमिन को दी है, मैं इसको सहूलत कहूंगा, बहुत बड़ा एहसान मोमिन पे किया है कि मोमिन फकत गुनाह का इरादा भी करता है या कोई गुनाह करता है तो इस दुनिया ही के अंदर उसको सख्तियों मुसीबतों और बलाओं में परवरदिगार गिरफ्तार कर लेता है, ताकि उसको खौफ खुदा दोबारा पैदा हो, तौबा की तरफ पलट आए, ताकि आखरत में उसे कोई अजाब ना भुगतने पड़े। काफिर को उस दुनिया ही के अंदर तमाम उसको सहूलतें मिल जाती हैं, अपने जो उसने जो भी थोड़े बहुत नेक काम किए हैं, तो उस वजह से काफिर के साथ ये मसला नहीं है। ये प्रोविजन फकत मोमिन को है। कभी भी कभी किसी बला के अंदर आप गिरफ्तार हों, तो जब भी ओराफा जब कोई मुसीबत आती है, तो शुक्र परवरदिगार अंजाम देते हैं कि आखरत में जो कुछ नताइज थे उससे मैं महफूज रहा, इस दुनिया ही में मुझको इसका बदला मिल गया। तो एक तो चीज़ हो गई है, यानी तकवा खुद दरमियानी कैफियत से आपको निकाल सकता है, और तकवा। अच्छा, फिर नंबर दो है, ये तो पहली चीज हो गई। अब लोग ये कहेंगे कि भाई तकवा तो हमारे पास है ही नहीं, हम फिर अपने आप को दरमियानी कैफियत से कैसे निकालेंगे, या तकवा हमारा मुकम्मल नहीं है कि जो हमें इस कैफियत से बाहर निकाल सके। तो फिर इस्लाम ने एक दूसरा हुक्म भी बताया है कि फिर आप नंबर टू पर अमल करें, और वो क्या है, एहतियात करें। एहतियात, किफ इन द शुभा। पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है कि शुभे के मौके पर जब भी तुम शक्को शुभे में गिरफ्तार हो जाओ, किफ तवक्फ करो, ठहर जाओ, उस काम को ना करो, टाल दो, तर्क कर दो अगर मुमकिन है आपके लिए। मसलन एक लुकमा आपके सामने आया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हलाल है हराम, छोड़ दीजिए, टाल दीजिए, तर्क कर दीजिए, मत खाइए। एक सफर आपको दरपेश है, समझ में नहीं आ रहा कि सफर जायज है या ना जायज, मत जाइए। यानी इस्लाम ने बाकायदे एक उसूल बनाकर पेश किया कि अगर ये आम जिंदगी में इसके मुजाहरे होने चाहिए, एहतियात करना चाहिए। बहुत सी चीजें आपको समझ में नहीं आता है, जिस मेहंदी की तकरीब में मैं जाने वाली हूं, क्या यहां पर जाना मेरे लिए जायज भी है या जायज नहीं। मालूम है कि मसलन जिस घर में जा रहे हैं वो दीन से लापरवाह है, और उन्होंने इस तरह का इंतजाम किए होंगे, जब वहां पर चले जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर बाद में लोग सवाल पूछते हैं कि हमने कहीं गुना तो नहीं कर दिया था। भाई आपको शुरू ही से एहतियात करना चाहिए, अपनी रूह को बचाना है। जब भी बाकायदा एक आलिम कहा करते थे ना, मैं अपने दोस्तों का दोस्त हूं लेकिन जहन्नुम के दरवाजे तक, मैं जो हूं उनकी वजह से जहन्नुम में नहीं जाऊंगा, उससे पहले पहले की बात के हद तक मैं उनके साथ हूं, बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोई जहन्नुम में जाना चाहे तो फिर मेरी कोई दोस्ती नहीं, जाहिर है फिर हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं उससे। अब बहुत से लोग फिर फौरन रिश्तेदारियों वाली बात ले आते हैं, वो एक कभी और मौजू है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल एहतियात एक ऐसी चीज है कि एहतियात उसको कहते हैं कि वो अमल इस तरह से अंजाम देना कि आपको अपना फरीजा शरई पूरा होने का यकीन हो जाए, आपको ओहदा बरा होने का यकीन हो जाए कि मैंने अपनी शरई जिम्मेदारी पूरी कर ली। खुदा के सामने क्या मैं जवाब दूंगा, खुदा के सामने मैं क्या जवाब दूंगी। आप देखिए ना, मराजे कितनी जो इस्तिलाहत इस्तेमाल करते हैं और एहतियातें इस्तेमाल करते हैं, आप भी कभी कभार चक्कर खा जाती हैं। एहवात ये है और एहतियातें वाजिब ये है और एहतियातें मुस्तहब ये है, ये एक एक जुमला इसका इजहार कर रहा होता है कि कितनी मसूलियत अपनी समझता है। मसलन वो कह भी दें तो आप कौन जाके आयतुल्लाह खामनेई से आप पूछने जा रही हैं कि आपने क्या दलाइल हैं आपके पास, आपने यहाँ पर ये फला चीज क्यों इस्तेमाल की। अगर वो कह भी दे तो आप आँख बंद करके यकीन करती हैं उनकी बात पर, लेकिन क्या है, लेकिन आपको उनके ऊपर पक्का एतमाद होता है, मसलन यकीन होता है कि ये ना अपनी मसूलियत का खौफ रखते हैं जब भी इस किस्म की इस्तेलाहत इस्तेमाल करते हैं। और उनके पेशे नज़र वो हदीस होती है कि हर फतवा देने वाला अपने फतवे का जामिन होता उन। तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें एहतियात करना चाहिए। यहाँ पर ये यह होता है कि तलाक के मामलात हो रहे होते हैं, लड़कियाँ तलाक लेने के लिए कितनी झूठी बातें मनसूब करती हैं अपने शोहर से, कि किसी भी तरीके से बस उनका इरादा हो गया तलाक लेने का, अब तलाक हर सूरत में लेनी है, अब शौहर पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं हाकिम शरा के कोर्ट में या जहां कहीं भी उनका तलाक का केस चल रहा है, उसमें कौन कौन से एविडेंसेस उसके लिए जो है तलाश किए जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं, फर्जी बातें की जाती हैं। तो इसी तरीके से तो आपके और खुदा के दरमियान मामला है, इंसान एहतियात करे, इस किस्म की चीजें इस्तेमाल ना करे, खुदा के सामने खड़े होने के से डरे, खौफ पैदा करे। तो बहरहाल कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, मसलन आपको मालूम चलता है किसी से कि फ़लाँ ने आपके मुतालिक ये बात कही है, आपको सही तौर पर कंफर्म भी नहीं होता लेकिन आप आगे बात बढ़ा देती हैं, उन्होंने मेरे मुतालिक ये बात कही थी या उन्होंने आपके मुतालिक ये बात कही थी। एहतियात करनी चाहिए हमें, क्योंकि यकीन नहीं है, सुनी सुनाई बात है, हमें नहीं कोट करनी चाहिए कहीं पर। तो इस सिलसिले में भी एहतियात से काम लिया जाए। इसी तरीके से मसलन कोई जॉब किसी को मिल रही है, मालूम है कि मशकूक जॉब है, इसमें कोई हराम काम मुझे करना पड़ सकता है, इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं, इंसान एहतियात करे, नहीं जाए उस जॉब की तरफ। तो देखिए अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से खाने हमारे सामने आ जाते हैं, बहुत सी मशकूक स्कीमें हमारे सामने आ जाती हैं, लोग जो हैं स्कीमें खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने पैसों की, बाद में हम देखते हैं कि उलमा से पूछते फिरते हैं कि अब तो पैसे हमने फंसा दिए, अब कोई ना कोई तरीका शरई तौर पर निकालिए। एक ऐसा इस्लाम है जो बड़ा अपने आप को लिबरल भी कहता है और लोगों को आसानियां भी देता है, और इतनी सख्ती के देखिए हमारा पैसा फंस गया, अब इसको जायज़ करने का कोई तरीका नहीं। भाई पहले ये चीज़ आपको पूछनी चाहिए थी, इंसान पहले नहीं पूछता, जब गिरफ्तार मुसीबत हो जाता है फिर इस्लाम के पास हल के लिए आता है। पहले मालूम कर लेते तो इस्लाम के पास बहुत सारे हल होते हैं कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मशकूक जितने भी मामलात हों उसके अंदर इंसान को देखना ये चाहिए कि मैं इसको अगर इस काम को टाल सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, तर्क कर सकता हूँ, तो उस काम को टाल दीजिए, छोड़ दीजिए, तर्क कर दीजिए। सफ़र दरपेश है, शक हो रहा है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, टाल दीजिए, नहीं मत जाइए। कोई लुकमा दरपेश है खाना, आप मत खाइए, मालूम नहीं कि इसके पास मसलन बहुत से, तो खैर वसवसों के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, वसवसों वाली बात नहीं। तो बहरहाल बाज़ औक़ात यानी नंबर एक इस्लाम ने एक असूल बताया कि अगर तकवा किसी के पास है तो तकवा खुद बता देगा कि मुझे क्या करना है। तकवा अगर हमारे पास मुकम्मल नहीं है तो इस्लाम ने असूल नंबर दो बताया कि उस काम जिसमें आपको तजब्जुब हो रहा है, तरद्दुद हो रहा है, अगर उसमें आप एहतियात कर सकते हो, उस काम को छोड़ सकते हो, टाल सकते हो, तो छोड़ दीजिए या टाल दीजिए, मत कीजिए, एक असूल ये। लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हम टाल भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, अब क्या करें, नहीं अवॉइड नहीं कर सकते उनको। तो फिर तीसरा असूल इस्लाम ने बताया, अब असूल नंबर तीन, तीसरा असूल ये बताया इस्लाम ने कि अपने नफ्स की मुखालिफत करें, यानी उस काम को अपने नफ्स के सामने पेश करें। अगर नफ्स ये कहे आपका कि हाँ इस काम को कर लो, बड़ा मजा आ रहा है, नफ्स बड़ा खुश हो रहा है, तो उस काम को हरगिज ना करें। और अगर नफ्स ये कहे कि अरे किस चक्कर में पड़ गए, हरगिज इस काम को ना करना, तो उस काम को जरूर करें, बशर्ते कि वो हराम वाला कोई ना हो। वो तो हम पहले बता दिए कि बहरहाल हराम और वाजिबात में तो अपना जो मसला है शरई है उसके ऊपर अमल करना होता है, चाहे हमें पसंद आए या ना। ये आम जिंदगी के शकुक शुबहात और तरद्दुद की बातें कर रहे हैं। नंबर एक तकवे से फैसला होगा, नंबर दो तकवा अगर हमारे पास नहीं है या मुकम्मल नहीं है तो फिर एहतियात से फैसला होगा, एहतियात कर सकते हो तो एहतियात करें, एहतियात नहीं कर सकते तो फिर उस काम को अपने नफ्स के सामने पेश करें, नफ्स के सामने पेश करें। नफ्स अगर ये कहे कि इस काम को कर लो तो उस काम को ना करें, नफ्स कहे कि इस काम को जरूर करो तो उस काम को हरगिज ना करें, यानी उस नफ्स की अपने मुखालिफत करें। यही वजह है कि आपने पिछली दफा जो हमारा एक लेक्चर हुआ था उसमें इमाम खुमैनी के मुतालिक एक सीरत का एक पहलू आया था कि जब उनके दोस्त के लिए उन्होंने खोरिश्ते सब्जी जो पकवाया तो खुद नहीं खाया, तो उनके दोस्त ने कहा कि आपको पसंद नहीं, कहा नहीं पसंद मुझे बहुत है लेकिन मैं अपने नफ्स की मुखालिफत करना चाहता हूँ। तो इंसानी उस चीज़ के अंदर बहुत दखील है इस किस्म के मुबाहात से परहेज करना। और एक चीज़ और भी होती है, एक तो है कि मुबाहात से परहेज नफ्स की मुखालिफत, एक होती है मुश्तबा चीज़ों से परहेज करना, इससे इंसान के तकवे में और ज़्यादा इजाफा होता है। देखिए ये बात याद रखिए कि हम भी एक परसेंटेज के एतबार से, चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों ना सही, इस्मत का कोई एक मामूली तरीन दर्जा परसेंटेज वाइज हासिल कर सकते हैं, 0.1%, 0.2% इस्मत हासिल हो सकती। यानी एक तो वो है जो जिस पे कामिलन आइमा मासूमीन और चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जिस मुकाम इस्मत पर फाइज हैं, वो तो अपना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब परवरदिगार खुद कहता है कि मैं चाहता हूं ये कि वो खुद रहीम है, वो चाहता है कि आपके अंदर भी सिफत पैदा हो, वो खुद करीम है, चाहता है कि मेरे बंदों में भी सिफत पैदा हो, वो खुद जिंदा है, वो खुद चाहता है कि मैं अपने बंदों को जिंदा जावेद रखूं, जब भी जन्नत जो है मैं उसमें हमेशा हमेशा की जिंदगी उसकी रहेगी, वो खुद वो सच्चा है, वो चाहता है कि मेरे बंदे भी सच्चे रहें। तो ये कैसे मुमकिन है कि आइमा मासूमीन खुद मुकाम इस्मत पर फायज हो और वो ये ना चाहते हो कि किसी परसेंटेज के एतबार से हमारे मानने वाले उस मुकाम को हासिल ना करें। जाहिर है वो तो इंतहाई बुलंदियों वाले मुकाम की मैं बात नहीं कर रहा, जो मामूली सा भी एक मुकाम है किसी भी एतबार से। एक बहस उठती है हमारे यहाँ, मसलन हजरत सानिया ज़हरा, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके लिए भी दुरूद भेजिए। چہارتے معصومین علیہ السلام کی طرح سے اس مقام عصمت پر فائز تو نہیں تھے، لیکن جو کمتر ہی درجہ ان سے تھا، لیکن ایک گونا عصمت حاصل تھی ان لوگوں کو. جب بھی ان کو خیر معصوم تو نہیں کہا جاتا بلکہ محفوظ کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ، محفوظ عن الخطا. تو یہ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی جو عصمت تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اور ابو الفضل اللہ عباس کی، یہ عصمت قصبی کہلاتی، یہ محنت سے اور مجاہدہ کر کے جو عصمت حاصل کی جاتی ہے اس مقام پر فائز تھے. باقاعدہ ہمارے جو ایک الغدیر جنہوں نے لکھی ہے علامہ عبد الحسین امینی، علامہ امینی کے نام سے جو مشہور ہیں، ایک آیت اللہ ابراہیم امینی ہے وہ الگ ہے جن کی کتاب خود سازی، ایک عبد الحسین الامینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی تھی اور بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک، ویسے ہم ایک علمی سوال آپ سے کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص آئمہ معصومین سے بڑی محبت رکھتا ہو، بڑی عقیدت رکھتا ہو، تمام ان کی ہر چیز کو مانتا ہو، صرف وہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ رکھتا ہو، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھیے بہرحال ایک سوال ہے کہ جو چہاردہ معصومین ان سے محبت رکھتا ہے لیکن حضرت عباس معصوم بھی نہیں ہیں، ان کی طرح کی عصمت نہیں ہے آئمہ کی طرح کی، تو کیا ان سے محبت نہ رکھنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ علامہ عبد الحسین الامینی انتہا سے زیادہ بیمار تھے اور بالکل بسترے مرگ پہ تھے، انتقال کچھ ہی عرصے بعد ان کا ہو گیا تھا جب یہ سوال پوچھا گیا، بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا غصہ آیا کہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم حضرت عباس علمدار کی بات کرتے ہو، میں جو کہ ان کے غلاموں کا غلام ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی شخص میرے اس بات جانتے ہوئے کہ میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میرے جوتے کے تسمے سے اگر محبت نہیں کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے ان علماء کا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو عصمت کی اگر کوئی پرسنٹیج حاصل کرنی تو مخالفت نفس سے حاصل ہو سکتی. انسان کوشش تو کرے بہت سی چیزوں کو، دل بڑا چاہ رہا ہوتا ہے فوراً دل گانے کا چاہے ہم گانا سننے لگے، کسی فحش قسم کے ڈرامے کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے اس کو دیکھنے بیٹھ جائیں، کوئی فضول قسم کی کوئی اداکارہ کا انٹرویو آ رہا ہے دل مچلنے لگے اس کے انٹرویو سننے کے لیے فوراً بیٹھ جائیں، کہیں نفس کی کوئی مخالفت ہی نہ ہو. کس طریقے سے کسی بھی مقام کو حاصل کیا جائے؟ زندگی ایسے شکوک و شبہات کے ساتھ گزرے گی اور کوئی بھی بلند مقام حاصل نہیں ہو سکے گا، اور پوری زندگی ایسی ضائع ہو جائے گی اس فضول ٹی وی کی نظر ہو جائے گی مثلا. تو بہرحال نفس کی ایک مخالفت یہ ایک ایسی چیز ہے. اب یہ تیسری چیز اسلام نے بتائی کہ جب بھی تردد و تذبذب کی حالت ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کرے. یعنی نمبر ایک کیا ہوا؟ نمبر ایک تقوی سے فیصلہ ہوگا، نمبر دو احتیاط سے کام لے، نمبر تین اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرے، نفس کہے کہ اس کام میں بڑا مزہ آ رہا ہے ضرور کرو تو اس کام کو ہرگز نہ کرے، اور نفس اگر کہے اس کام کو نہ کرو تو اس کام کو ضرور کرے. یہاں پر پھر ایک تیسرے میں اندر بھی ایک مسئلہ ہے، تقوی ہمارے پاس تھا نہیں، تقوی سے فیصلہ نہیں کر سکے. بہت سے کاموں میں احتیاط ممکن نہیں ہوتی، احتیاط ہم کر نہیں سکے. کام کو ہم نے اپنے نفس کے سامنے پیش کیا، ایک مسئلہ ایک اور ہے کہ جو ہم کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دیکھیے ایک ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نفس کی آواز اور ایک ہوتی ہے ضمیر کی آواز. اب یہ ضمیر کی آواز ہے نفس کی آواز ہے؟ بعض اوقات یہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، جیسے بلڈ پریشر کا آلہ بالکل صحیح ریڈنگ بتا رہا ہے لیکن جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے مثلا، جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کو صحیح طور پر بتا سکے گا. تو ہمارے پاس اب تیسری چیز بھی نہیں آ پاتی، نہ ہمارے پاس تقویٰ ہے نہ ہم احتیاط کر سکتے ہیں بعض حالات میں، اور بعض تیسری کنڈیشن جو آتی ہے مخالفت نفس، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اندر سے ضمیر کی آواز آ رہی ہے کہ نفس کی آواز آ رہی ہے. اس کے بعد چوتھی چیز اسلام نے بتائی، تم استشارہ کرو، مشورہ لو، مشورہ. دیکھیے اسلام میں اس کی بڑی تاکید آئی، ابھی آگے چل کر مجتہدین کے جب فتاوے سنیں گے تو بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے کہ انسان مشورہ لے. پیغمبر اسلام کو دو جگہوں پر پروردگار نے قرآن میں حکم دیا وشاورہم، اے رسول جب بھی تم کوئی کام کرو اپنے اصحاب باصفا سے مشورہ ضرور لیا کرو. بہرحال پیغمبر اسلام مشورہ لیتے تھے، پھر کرتے وہی تھے جو حکم خدا ہوتا تھا، लेकिन बहरहाल मशवरा जरूर लेते थे। ये हुक्म जो है पैगंबर इस्लाम को कि आप भी मशवरा लें, ये कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 में है। ये वाला हुक्म सूरह आले इमरान आयत नंबर 159, और दूसरा है सूरह शूरा की आयत नंबर 36 से 38 के अंदर। आप जाके कुरान से वो आयतें उतार के देखिएगा कि जिसके अंदर अलग से पैगंबर इस्लाम को ये हुक्म है कि अपने असाब से मशवरा लो। अच्छा देखिए, अब ये जो आयतें पैगंबर के लिए भी आई हैं मशवरे के लिए, मशवरा लेने का हुक्म का यानी इस्लाम में एक फलसफा है। फलसफा, ये थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक है, वो सही कर लीजिए। फलसफा क्या है मशवरा लेने का? क्यों इस्लाम हुक्म दे रहा है कि तुम लोगों से मशवरा लो? इसका देखिए, इसका फलसफा ये कि इंसान कभी भी अपने आप को अकले कुल ना समझे, बस जो हूं मैं बहुत काबिल हूं, मैं बड़ा जहीन हूं, मुझे किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं। परवरदिगार आलम की जात है जो मशवरे से मुस्तगनी, वो किसी के मशवरे का ना पाबंद है, वो खालिक है, बाकी सब लोग उसकी मखलूक हैं, वो किसी के मशवरे का पाबंद नहीं। लेकिन मखलूक को हुक्म है कि तुम जरूर लोगों से मशवरा लो, ताकि कोई भी शख्स अपने आप को अकले कुल ना समझे और एक गोना तकबर का एहसास उनके अंदर पैदा ना हो जाए। इससे भी परवरदिगार बचाना चाहता है। अच्छा, इस सिलसिले में रिवायतें भी बड़ी आई। कितने रिवायतें? मसलन एक रिवायत में आएगा, मन इस तबद्दा बे राय ही सलब अल्लाह राय हो। जो शख्स भी अपने आप को बड़ा अकलमंद समझता है और अपनी राय को हर जगह फौकियत देता है, एक वक्त ऐसा आता है कि परवरदिगार उसकी राय को सलब कर लेता है, उसकी अकल ही जवाब दे जाती है, गलत सलब फैसले करेगा। जो भी कहीं पर भी आप देखते हैं कि वन मैन शो जिस जगह भी चलता है, अब मशवरे से काम नहीं होता, वहां पर कोई बहुत बड़ी खराबी कुछ ही अरसे में जन्म ले लेती। मन इस तबद्दा बे राय ही, जो अपनी राय को फौकियत देता है, सलब अल्लाह रायहु, परवरदिगार उसकी राय को और उसकी अकल ही को सल्ब कर लेता। अल मुशावरत ऐनुल हिदाया, मशवरा एक ऐसी चीज है जिसमें परवरदिगार आलम ने हिदायत रखी, पक्की पक्की हिदायत है मशवरा। ऐनुल हिदाया, बिल्कुल पक्की हिदायत, यानी अगर आप मशवरा ले रहे हैं किसी से, जिनकी जो भी शर्तें कुछ बयान होने वाली हैं आगे कि किन अफराद से मशवरा लेना, तो ऐसे ही है जैसे परवरदिगार आलम आपने आपको बता दिया कि तुम इस काम को करो या ना करो। जो भी वो मशवरा मिल रहा है उनकी जुबान से, गोया वो परवरदिगार की तरफ से पक्की पक्की हिदायत है जो आपको मिल रही है। तो हालत शक और तरद्दुद और तजब्जुब में, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई कारोबार हो, कोई और मसला हो, लोगों से मशवरा लेना, वो कुछ खास 9-10 शर्तें रखने वाले अशख़ास से मशवरा लेना, ऐसे ही है जैसे परवरदिगार आलम ने आकर आपको कोई चीज बता दी हो कि तुम्हें ये काम करना। ला ज़हीरा कल मुशावरा, कोई भी चीज मशवरे से बढ़कर इंसान की मददगार नहीं, मशवरे से बढ़कर कोई चीज मददगार नहीं। मल्लम यस्तशिर नदेमा, जो मशवरा नहीं लेता वो हमेशा नदामत उठाता। मशवरा नहीं लिया आपने, नदामत उठाई। कितनी रिवायतें और हैं, मन अतबा इमरान अनिल मुशावरा लन युहलका इमरान अनिल मुशावरा, आज तक कभी कोई शख्स किसी गड़े में नहीं गिरा है मशवरे की वजह से, आज तक कभी कोई शख्स नुकसान में गिरफ्तार नहीं हुआ है किसी मशवरे की वजह से। और बाकायदा नहजुल बलागा में तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस किसी शख्स ने भी आदत यह बना ली कि वो मुख्तलिफ लोगों की राय और मशवरों को जमा करता है, तो वो वाकिफ हो जाएगा कि कहां कहां खता और गलती का इम्कान है, पता चल जाएगा उसको राय और मशवरा। और ये भी हदीसों के अंदर आया कि तीन अफराद कमर तोड़ने वाली, यानी काम बहुत बिगाड़ देते हैं, कमर टूट जाती, तीन अफराद कमर तोड़ने वाले हैं। मन इस्तकसरा अमलहु, जो अपने अमल को बहुत बड़ा समझे, ये भी बेकार हो गया, जाया हो गया, ये गुरूर व तकब्बुर का शिकार हो गया, इसका अमल सारे बर्बाद। मन इस्तकसरा अमलहु वमन नसीहा जम्बहु, जो अपने गुनाहों को फरामोश कर बैठे, तौबा की तरफ मायल ही ना हो, इसने भी कमर तोड़ दी। और तीसरी चीज है मन इस्तबद्दा बिराय ही, जो कि अपने राय को हमेशा फौकियत दे, बस मैं हूं, जो मैंने बात कह दी वो बिल्कुल सही। जो इस किस्म की सोच दिमाग में रखता है ये जरूर बिजरूर नुकसान उठाएगा, ये कमर तोड़ देने वाले अफराद। जब भी हुक्म है कि अपने से कमतर से भी आप मशवरा ले सकती हैं, अपने से जो पस्त हो मुकाम में, मर्तबे में, इल्म में, कम पढ़ा लिखा है आपसे ज्यादा, डिग्रियों में कोई कम है, उससे भी आप मशवरा ले सकती हैं। امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اللہم صل علی محمد اپنے ایک صحابی سے مشورہ لیا کہ تم مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. امیر المومنین نے عقل کل, صحابی جو ہے حیران رہ گئے, کہنے لگا مولا مثلی استشیر و مثلک, میرے جیسا انسان آپ جیسے انسان کو مشورہ دے گا. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شبہ المہذب, امام گویا غصے سے انگارہ ہو گئے اور کہنے لگے تم کہتے ہو کہ میں تم سے مشورہ نہ لوں, پیغمبر خدا تک اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے, تو اپنے سے کمتر سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن ابی عمیر, بہت بڑا مقام ہے ابن ابی عمیر کا. فضیل سے روایت نقل کرتے ہیں, ایک دفعہ چھٹے امام نے کسی کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ مانگا, کہا مولا میں آپ کو مشورہ دوں گا. امام نے کہا ہاں جب مانگا جائے. تو دیکھیں امام نے اس میں دو باتیں کہی, ایک تو امام نے پہلی چیز تو یہ کہ اگر مانگا نہ جائے تو ہر جگہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ جو ہے مشورہ, مفت مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے نہیں مشورہ مانگا گیا تو آپ نہ دیجیے, سوائے اس کے کوئی بہت بڑا نقصان آپ دیکھ رہی ہوں, مشورہ نہیں دوں گی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. امام نے روک دیا. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہاں جب مانگا جائے, یعنی نہیں مانگا جائے تو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. تو دیکھیے اس میں ایک یہی بات ہے کہ بہت سارے افراد ہیں کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں, شادی بیاہ میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, اور بہت سے تو ایسے ہیں جو ضمناً, بیچ میں بات آ گئی, اتنی موضوع سے متعلق تو نہیں. ایک کیٹیگری افراد کی وہ ہے کہ جب دوسروں کی خوشیوں کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ منہ پھلا کے بیٹھتے ہیں. شادی ہو رہی کسی گھر میں, اب وہ کہہ رہے ہیں فلاں نے مجھ کو یوں نہیں بلایا تھا, اور انہوں نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, اور انہوں نے ہم سے مشورہ کیوں سلسلے میں نہیں کیا تھا, اور منہ بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ان کے گھروں میں خوشیاں ہو رہی ہیں اور یہ ان کی خوشیوں میں جو ہے نا رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. بہت سارے افراد اس طرح سے ہر شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ منہ پھلائے ہوئے رشتہ دار جو ہیں اس موقع پر موجود ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی, کسی کے گھر میں خوشی ہے, ان کو آدمی کرکرا کر رہا ہے, وہ لوگ بھی بےچارے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو ایک تو اس کے اندر یہ کہ ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑائی جائے, اور دوسرا ہے کہ اس کا پیغام کہ ہاں اپنے سے پست آدمی سے بھی مشورہ مانگا جا سکتا ہے جو ہم سے مقام اور مرتبے میں کم. حسن ابن جہنی, یہ بھی ایک راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آٹھویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ امام کی خدمت میں موجود ہونے کے بعد آٹھویں امام کے پاس ساتویں امام کا تذکرہ ہونے لگا. تو آٹھویں امام نے فرمایا کہ میرے بابا کی عقل, یعنی ساتویں امام کی عقل ایسی تھی, فرماتے میرے بابا کی عقل ایسی تھی کہ ان عقلہ لا یوازن بہ العقول, کسی انسان کی عقل سے میری بابا کی عقل کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. آٹھویں امام ساتویں امام کے متعلق کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے پھر بھی یہ دیکھا کہ ساتویں امام اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو جب پوچھا گیا کہ مولا, یعنی جو عقل کل ہو کہ کسی انسان کی عقل سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا, اور امام اپنے حبشی غلام سے مشورہ لے رہے ہیں, پوچھا جاتا تھا مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں, امام فرماتے تھے فتح اللہ علی لسانی, تمہیں کیا پتا, ہو سکتا ہے کہ پروردگار میری ہدایت کا سامان اس غلام کی زبان پر ہی جاری فرما دے. جب بھی آپ کسی سے مشورہ لیتی ہیں نا, ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تو آپ جو مشورہ لیں گی پھر یہ منہ سے جو بات نکالے گا مشورے کے طور پر, یہ پروردگار ہدایت کا سامان ہے جو اس کی زبان پہ جاری کر رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ نادر شاہ درانی, آپ کو پتا ہے نا نادر شاہ درانی ایک چرواہا تھا, ایک گڈریا تھا, اتفاقات زمانہ کے تحت اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تھی, بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. بہرحال اب اس زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر ان کے روزے پر اس نے اپنا وہ لگوایا سونا. اب جب انجینئرز گئے انہوں نے کہا کہ کم سے کم امیر المومنین کے روزے پر کوئی ایک ایسی آیت جو امیر المومنین کی شخصیت پہ بالکل فٹ بیٹھے وہ تو کوئی نہ کوئی ضرور لکھوانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, بادشاہ کے سامنے ذرا نمبر بھی بن جائیں گے. کہا کہ لوگوں کو جا کے پوچھا, بادشاہ سے پوچھ کے ہو کہ کون سی آیت لکھوائیں. लोग गए, बादशाह ने कहा कि वायद लिखवा दो ना कुरान की, यदुल्लाहु फौका अयदीहिम, खुदा का हाथ तमाम इंसानों के हाथों पर फौकियत रखता है। हैरान परेशान सारे इंजीनियर्स, गडरिया चरवाहा अनपढ़ जाहिल, और ऐसी बेहतरीन आयत अमीरुल मोमिनीन के लिए बताई कि शायद ही कोई इतनी फिट बैठती हो। यदुल्ला मौला का लकब भी, यदुल्लाहु फौका अयदीहिम, खुदा का हाथ तमाम इंसानों के हाथों पर फौकियत रखता। हैरान रह गए, कहा कि भाई दोबारा पूछ कर आओ बादशाह से। दोबारा गए सब लोग, कहा कि कोई आयत बताइए। कहने का कि मैंने तो आज तक कभी कुरान नहीं पढ़ा, जाओ जाके किसी आलिम से जाकर पूछो। यानी खुदा ने उसकी जुबान पर वो चीज जारी कर दी। देखिए मुकाम मशवरा के अंदर बाज़ोकात ऐसी चीजें हो जाती हैं कि मशवरा इतनी अहम चीज है कि ज्यादातर हालात में इस्तिखारे पर मुकदम है। मैं भी आगे चलकर इसकी तफसील बताने वाला हूँ आपको उलमा और मराजे की तरफ से। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज है कि खुदा उसकी जुबान पर भी चीज जारी कर सकता। एक बात और कि जब कभी आपसे कभी मशवरा मांगा जाए, क्योंकि लोग आप ही तो जरूरी हर एक से मांगे, आपसे भी लोग मशवरा मांग सकते हैं, तो हमेशा बिल्कुल सही सही मशवरा देना है। कोई अपने मफादात को नहीं देखना है आपने, कोई अपना कोई जाती फायदा नहीं देखना है कि अपना फायदा वाला मशवरा आप उनको दें, सही मशवरा देना है। जब ये रिवायतों में आया कि अल मुस्तशारो मुतमिनुन, जो जिससे मशवरा मांगा जाता है वो अमीन बन जाता है। अब अगर इसने मशवरे के अंदर कोई गड़बड़ की तो अब ये खयानत का मुर्तकिब होगा, इस तरह अमानत में कोई खयानत की जाती। अच्छा मसलन बहुत सारे लोग होते हैं, किसी ने मशवरा मांगा कि भाई फलां लड़की के साथ मसलन किसी लड़के का रिश्ता आया और आप जो हैं उसकी शादी, आपने सोचा कि इस बेचारी की उम्र निकली जा रही है, शादी नहीं हो रही, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर इस तरह की हैं कि मशवरा उसके बरखिलाफ आपको देना है, लेकिन आपने ज़रा तारीफ़ें करके कि चलो इस बेचारी का हो जाए, बेचारी का कह के उस लड़के को मसलन गलत फंसा दिया, या इसका वाइस वर्सा उल्टा कर लें, लड़के का कोई मसला है आपने जो है ना ज़बरदस्ती की तारीफ़ें करके उस लड़की को वहाँ पे फंसा दिया। इसी तरीके से बहुत सारे बीमारों के हवाले से जो मशवरे होते हैं, तो हमेशा सही मशवरा देना है सही। इसमें किसी भी तरह की चीज़ों का वो नहीं देखा जाएगा कि मसलन हमारी कोई कज़िन की का अच्छा रिश्ता आया हुआ कि उसकी शादी बहुत अच्छी जगह पर हो जाएगी तो लोग उसमें रखना अंदाजियाँ करते हैं और शादियाँ गलत सलत मशवरे दे के वहाँ पर नहीं होने देते। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा सही मशवरा देना चाहिए, क्योंकि मशवरा देने वाला अमीन बन जाता है। अच्छा गलत मशवरा अगर आपने दिया, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते। अगर आपने गलत मशवरा दे दिया तो एक रिवायत में एक नुकसान तो कम से कम ये है कि परवर सलब अल्लाह अकलहू, खुदा उसकी अकल ही को सलब कर लेगा, अकल सलब हो जाएगी उसकी, ऐसे गलत गलत फैसले अपनी ज़िंदगी में करेगा गलत मशवरा देने की वजह से। मन गश्शा लिल मुस्लिमीन मशवरतन फकत बरे तो मिन हो, पैगंबर फरमाते हैं कि जिस किसी ने भी किसी को किसी मुसलमान से मशवरे में कोई गड़बड़ की और धोखा दिया मशवरे में किसी को, गलत मशवरा दिया, फकत बरे तो मिन हो, उसका और मेरा तबर्रे का रिश्ता, तबर्रा जो आप दुश्मनाने अहले बैत पे करती हैं, यानी हमारा मेरा और उसका तबर्रे का रिश्ता है पैगंबर फरमाते हैं। तो कभी किसी को गलत मशवरा नहीं देना है, ये क्या हम बात है। अच्छा कभी भी आप मशवरा अगर किसी से ले लें, या तो मशवरा नहीं लेने चले अपने मुद्दा अकल से काम कर लिया आपने, लेकिन अगर आपने कभी मशवरा लिया तो फिर उस मशवरे की मुखालिफत ना करें। इस्तरशतुल आकिला फला तासुहु फतंदिमा, हदीसों में आया कि अगर किसी ने किसी से कोई मशवरा लिया, आकिल से तुमने मशवरा लिया, फला तासुहु, खबरदार अब इसकी मुखालिफत ना करना, फतंदिमा अगर तुमने मुखालिफत की तो खुद ही तुम नदामत उठाओगे। तो बहरहाल रिवायतों में भी ये चीज आई कि जब भी कोई शख्स मशवरे के खिलाफ कोई काम करे और हलाकत में गिरफ्तार हो जाए, परेशान हो जाए क्योंकि मशवरे की मुखालफत कर ली, तो हमेशा अपने नफ्स को मलामत करे, किसी और पर इसकी जिम्मेदारी ना डाले, हमेशा अपने आप से कहे कि मैंने ही गड़बड़ और गलती की थी। अच्छा अब लोग जो हैं, मसलन बहुत से लोग खवातीन से मशवरा लेकर उसके मुखालफत करते हैं, कहते हैं देखिए रिवायतों में आया कि औरत से मशवरा लो और उसकी मुखालफत करो। तो ये तो पिछली दफ़ा भी बात बयान हो गई थी कि जो इस किस्म की रिवायतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास वाक़े के तनाजुर में हैं, जब जंग जमल वाक़े हो रही थी उस मौके पर अमीरुल मोमिनीन ने उस औरत का नाम नहीं लेते थे, उनका नाम नहीं लेते थे, इज्जत व एहतराम पैगम्बर की वजह से, लेकिन लोग समझ जाते थे कि किस औरत की बात हो रही, क्योंकि सारी ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन ने वो बातें नहीं कही, वो सिर्फ आधे साल की ज़िंदगी में 62.5 साल की ज़िंदगी कुछ और थी, लेकिन वो जो खास तौर पर औरतों की मजम्मत की है, वो एक खास औरत मुराद होती थी। तो बहरहाल, और इस्लाम में देखिए वैसे भी कोई जेंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जो भी मुत्तकी और परहेजगार है, चाहे मर्द हो औरत, उसके लिए इसी तरह से जन्नत है। इसमें मर्दों को कोई खसूसियत नहीं है। हाँ, जिम्मेदारियां अलबत्ता दोनों की अलग अलग, वरना बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हजरत जहरा को फौकियत मिलती है। कितनी हदीसें ऐसी हैं, यानी बज़ाहिर वो लगता है कि फौकियत है, कि पैगंबर की वो हदीस कितनी मशहूर है कि अगर परवरदिगार अगर मैं ना होता तो परवरदिगार कायनात को पैदा ना करता, और अली ना होते तो खुदा मुझे पैदा ना करता, और अगर फातिमा ना होती तो खुदा मुझे और अली को पैदा ना करता। अगर मैं ना होता तो खुदा कायनात को पैदा ना करता, अली ना होते तो खुदा मुझे पैदा ना करता, और अगर फातिमा ना होती तो खुदा मुझे और अली को पैदा ना करता। तो इसका मतलब बहुत से अकायद के उलमा से सवाल किया जाता है, इसकी तफसीली जवाब है। बहरहाल तो लोग ये समझते हैं कि इससे तो फौकियत हजरत जहरा पैगंबर इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन पर भी जाहिर होती, जबकि ऐसा मसला नहीं, उनसे फौकियत नहीं है। तो इसका अलग जवाब आते हैं, इसका मौके का इस वक्त नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये कि इस तरह की चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी हैं। कितने ही पैगंबर की अपनी ज़िंदगी में ऐसा मिलता है कि पैगंबर ने औरतों के मशवरे पर काम किया है। हज़रत उम्मे सलवा के मशवरे पर पैगंबर ने सर को मुंडवाया था, जब मुसलमान सर मुंडवा कर अहराम उतारने को तैयार नहीं हो रहे थे। अभी सिर्फ मैंने इशारा किया, वरना एक तफसीली वाक़ा है। सलमान फारसी की राय को राय और मशवरे से खंदक पैगंबर इस्लाम ने जो है वो खोदी थी, जो कि उनसे अकल के अंदर कोई मवाजना ही नहीं है। तो बहरहाल मशवरा लेकर इंसान मुखालिफत ना करे, ये एक चीज़ है, वरना वो नुकसान उठाएगा। अच्छा, अब किन लोगों से मशवरा लें? देखिए, अभी इस्तखारे के मरहले से बहुत पहले ये वाले मरहला है जिसके ऊपर आपको अमल करना होता है, चाहे शादी ब्याह की का मसला कोई हो, कोई मुलाजमत हो, कारोबार का मसला हो, या कोई और मशवरा लें। लेकिन किन लोगों से मशवरा लें? देखिए, इन्ना ले मुशाविरत हुदूदोहा, मशवरे की कुछ हुदूद और क्यूद हैं। ऐसा नहीं कि हर राह चलते शख्स से, हर सहेली से, हर फासिक फाजिर रिश्तेदार से मशवरा, नहीं, ऐसा नहीं है। मशवरे के कुछ हुदूद हैं कि इन्ना ले कुल इस्तिशारा हुदूदुन कानत मज़र्रतुहा अक्सरु मिन मनफातिहा। हदीस में आया कि बेशक मशवरे की कुछ हुदूद हैं, और अगर तुमने इन हुदूद को नहीं पहचाना तो मशवरे से जो नुकसान है वो ज्यादा हो जाएगा, फायदा कम हो जाएगा। मशवरा से नुकसान ज्यादा हो जाएगा, फायदा कम होगा, अगर तुमने हुदूद मशवरा को नहीं पहचाना। किन अफराद से मशवरा लें? अब रिवायतों में वो चीज बयान हुई। सबसे पहले तो चीज ये कि जिस किसी से भी मशवरा लें उसको मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। मुत्तकी और परहेजगार, अगर आज वक्त बचा कुछ तो इसके ऊपर तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे, शायद गुफ्तगू आखिर में बिल्कुल, लेकिन अभी मैं इसको फिलहाल इसको नहीं लाना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल जिससे किसी से भी आप मशवरा लें उसे मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए, एक चीज हो गई। उसके बाद यानी हर फासिक फाजिर शख्स से मशवरा नहीं ले सकते, क्योंकि जो शख्स अपने परवरदिगार से ही वफा नहीं कर रहा है वो आपसे मशवरे में क्या वफा करेगा। तो इस वजह से मुत्तकी परहेजगार से मशवरा लें। दूसरी चीज, जिससे भी मशवरा लें उसे आकिल होना चाहिए, अकलमंद। इन्ना मुशावरतु आकिलतुन नासे युम्नुन व रुशदुन व तौफीकुम मिन अल्लाह। कितनी हदीसों के अंदर भी आता है, क्या किसी आकिल शख्स से मशवरा लेना, यानी बेवकूफ ना हो, माशरे में बेवकूफ और अहमक मशहूर, उससे मशवरा ले रहे हैं। किसी के अपने खुद उल्टे सीधे फैसले करता है जिंदगी में, उससे मशवरा ले रहे हैं, नहीं, आकिल शख्स से मशवरा लेना। क्योंकि आकिल शख्स से मशवरा लेना अल्लाह की तरफ से हिदायत और तौफीक और मदद है आपकी। तो एक तो चीज ये हो गई। अच्छा, जरूरी नहीं आकिल से मुराद की कोई बहुत बड़ा PhD, कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल, बहुत उसी से मशवरा नहीं, माशरे के अंदर जो जिसकी अकल बिल्कुल सही है, अच्छा है, दयानतदार आदमी है, मुत्तकी परहेजगार है, नॉर्मल से जो अफराद होते हैं उनसे आप मशवरा ले सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि जिससे भी आप मशवरा लें उसे एक तजर्बेकार बुजुर्ग हो तो ज्यादा अच्छा, बशर्ते वो सब खसूसियात भी पाई जाए। दाढ़ी मुंडे हुए तजर्बेकार बुजुर्ग नहीं चाहिए इसके अंदर। मसला ये कि जो मुत्तकी परहेजगार भी हो, आकिल हो, तजर्बेकार बुजुर्ग। जब भी नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे ना कि मुझे तजर्बेकार बुजुर्ग की राय जवान के जोश व हिम्मत से ज्यादा पसंद, क्योंकि जवान हर चीज में हर खतरे में छलांग लगाने को तैयार होता है। तजर्बेकार बुजुर्ग ऐसा नहीं करता, जज्बात की रौ में बहकता नहीं। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब आगे चलकर हमारी जो अगली नशिस्तें आने वाली हैं उसके अंदर एक पूरी एक गुफ्तगु हमारी तकिये के उनवान पर होगी कि आजकल के दौर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि सिर्फ चंद एक नौजवान ऐसे शुतर बेमहार की तरह जो आज़ाद होते हैं, बाज़ औक़ात पूरी पूरी कौम को डुबो देते हैं। ऐसी फसादात की आग भड़क जाएगी उनके दो एक काम अमल करने से कि पूरी कौम जो है मारी जाएगी उस चक्कर में। तो नौजवान तो हमेशा खतरात के अंदर छलांग लगाने को तैयार रहते हैं। जब भी कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि तजर्बेकार बुजुर्ग की राय जवान के जोश व हिम्मत से ज्यादा पसंद। अच्छा, इसी तरीके से उसके बाद पैगंबर ने तीन कैटेगरीज अफराद की बताई, खबरदार इनसे मशवरा ना लेना, बुजदिल से मशवरा ना लेना, कंजूस से मशवरा ना लेना और हरीस से मशवरा ना लेना। नंबर एक, बुजदिल से ना लेना। एक शर्त यह होगी बुजदिल से मशवरा नहीं, क्योंकि इतना डर डर के आपको मशवरा देगा कि आपको कोई काम करने ही नहीं देगा। नहीं, ये काम ना करना, अरे ये काम ना करना, अरे ये नुकसान, अरे वो नुकसान, कोई काम ही नहीं कर सकते उससे मशवरा लेके क्या करेंगे, वो तो आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। बुजदिल अमूमी जिंदगी में भी जो इस किस्म के हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डरता हो और हर वक्त एहतियात 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 कह के आपको पीछे करता रहता हो, इससे मशवरा लेने का फायदा नहीं। बुजदिल से नहीं, कंजूस से मशवरा ना लेना, बकील से, यानी हर वो तुम्हें मशवरा देगा जिसमें तुम्हारा नुकसान और उसका फायदा होगा। देखिए कहा जाता है कि पर्चे जब भी चेक करवाए जाएं, तालीमी नफ्सियात में एक चीज है, हमेशा उससे चेक करवाए जाएं जिसके खुद बहुत अच्छे नंबर आते रहें, वरना जो खुद पासिंग मार्क्स ग्रेस मार्क्स लेके पास होता रहा हो तो वो अगर किसी को 45 नंबर भी देगा तो सोचेगा बहुत ज्यादा दे दिए, खुद मेरे तो अपने 40 ही नंबर आते थे मैं तो खुद 33 नंबर देता रहा हूं, तो 40 भी बहुत समझेगा देते हुए, तो ये भी नफ्सियात होती। हमेशा कंजूस ऐसा मशवरा देगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस किस्म का मशवरा देगा, यानी जान बच जाए पैसा जरा सा ना जाए, हराम स्कीमों में पैसा लगा देगा, आपको ऐसा मशवरा देगा कि भाई इस फला स्कीम के अंदर पैसा लगाओ, आप कहेंगे भाई तो हराम है, कहेगा हराम हराम को छोड़ो, पैसा तो ठीक है ज्यादा आ रहा है ना। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं, कितने परेशान होते हैं लोग कि उन्हें बताया जाए कि भाई गवर्नमेंट की स्कीमों के अंदर जो पैसा लगाया जाता है उसमें 50% गरीब को देना जरूरी हो जाता है अक्सर महाराजे के फतवे में, तो मानते ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा इस्तेमाल करना हराम हो जाता है उसका। तो ऐसे कंजूस हमेशा ऐसा मशवरा देगा वो तो बहुत नुकसान समझेगा, होम्स देने को भी नुकसान समझेगा, सदका देने को भी नुकसान समझेगा, 50% इनाम की रकम का या 50% प्रॉफिट की रकम का गरीब को देने में भी नुकसान समझेगा, मशवरा ऐसा आपको देगा कि आप कि हराम चीज में पैसा लग जाए चाहे, लेकिन पैसा कहीं जाया ना हो। और तीसरी चीज पैगंबर ने जो फरमाई कि हरीस नहीं होना चाहिए, हरीस ना हो, लालची ना हो, कि वो दुनिया और आखरत की हर बुराई को तुम्हारे सामने अच्छाई बनाकर पेश करे, क्योंकि वो लालची है ना, उसे तो हर सूरत में फायदा दरकार है, तो इससे मशवरा ना लेना। अच्छा, इसी तरीके से जो मशवरे की और शर्तें हैं कि जिससे भी आप मशवरा लें उसको आपका दोस्त हमदर्द और खैरख्वाह होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो कहे भाई मशवरा दे तो रहा हूँ नुकसान होगा तो मेरा क्या, इसी का नुकसान होगा, ये भुगतेगा खुद, नहीं ऐसा नहीं, वो आपके नुकसान को अपना नुकसान समझे, वो परेशान हो जाए कि बहन इसको अगर इस किस्म का कोई इसको नुकसान हुआ तो आपके नुकसान को अपना नुकसान समझे, आपका दोस्त हो, आपका हमदर्द हो, आपका खैरख्वाह हो, एक ये चीज है जो जिसका ख्याल रखना चाहिए। जिस किसी से भी मशवरा दें लें आप उसको आपका राजदार होना चाहिए। आप तो मशवरा ले रहे हैं उससे, जाहिर है मशवरा लेने में बहुत सी बातें बताई जाती हैं, वो अब आपने राजदारी से मशवरा उससे लिया, उसने दूसरों में सब आपकी बातें बयान कर दी, आपका राजदार होना चाहिए, आपकी बात को सीक्रेट रखने वाला हो, ऐसा ना हो कि हर आदमी को एतमाद में लेके कहे कि देखो किसी और को मत बताना, उन्होंने फलना चीज मुझसे पूछी थी, मशवरा मांगा था, मकान अपना बेचने वाले हैं वो, या बेटी की उनकी फलना जगह से मसलन रिश्ता आया हुआ है, या कोई भी इस किस्म का, तो पूरे खानदान के अंदर बीबीसी जो है वो बने होते हैं बहुत सारे लोग, हर जगह बात को फैला देते हैं। आपका राजदार होना चाहिए, राजदार आपकी बातें दूसरों को बताता ना, फिर जिस किसी से भी आप मशवरा लें, मशवरे की हद तक आपकी मालूमात और उसकी मालूमात बराबर होनी चाहिए, ये बड़ा अहम मसला। कभी भी नामुकम्मल मालूमात देकर मशवरा लेंगे तो नुकसान होगा, मशवरे की हद तक, ये नहीं कि हम खानदान के सारे राज उसको बता दें, नहीं, मशवरे की हद तक आपकी मालूमात, कोई चीज छुपाए नहीं उससे, जिसका भी मशवरा ले रहे हैं पूरी बात बताएं कि भाई ये है, ये हालात हैं, ये वाकयात हैं, इस सिनेरियो में मुझे मशवरा दें। ये नहीं कि खानदान की और सब बातें इररेलेवेंट जिसको कहा जाता है वो आप उसके सामने बयान करने लेंगे। मशवरे की हद तक आपकी मालूमात और उसकी मालूमात बराबर। मासूम ने फिर ये तमाम जब शर्तें बताई तो कहा कभी तुम अगर इस तरह से मशवरा लोगे, कभी हलाक नहीं होंगे, कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, कभी परेशान नहीं होंगे और बिल्कुल हमेशा तुम्हें ठीक ठाक सही तौर पर मशवरा मिलेगा। अच्छा, मशवरे की हद तक मशवरे में दो मुस्तहब हुक्म और हैं। मशवरा जिस किसी से भी आप लें, दो मुस्तहब हुक्म। एक तो ये कि सबसे पहले परवरदिगार आलम से दुआ करें फिर मशवरा लें। पहले दुआ फिर मशवरा कि परवरदिगार मैं ये मशवरा लेने जा रही हूँ, तू इसमें खैर नाजिल कर। परवरदिगार से एक दुआ करें फिर मशवरे के लिए किसी दूसरी तरफ जाएं। और दूसरा जो मुस्तहब हुक्म है, पैगंबर फरमाते जब जिस किसी से भी मशवरा लो कोशिश करो कि वो मेरा हम नाम हो, यानी उसका नाम अहमद, महमूद या मोहम्मद में से कोई एक हो। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। यानी दूसरे अल्फाज में ये तमाम शर्तें रखने वाले शख्स में एक एडिट बात ये अगर हो जाए कि पैगंबर का हम नाम हो तो हमेशा अच्छा मशवरा मिलेगा। लेकिन उन शर्तों में से कोई एक कम हो और नाम कितना ही अच्छा हो, जैसे जिक्र हुआ था इससे पहले अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने नाम था अब्दुल रहमान, लेकिन क्या है कि अफजल एक कायनात जो आदमी है, शख्स है, अजीम शख्सियत, उसको जो है शहीद कर दिया। नाम कितना अच्छा है उसका, और करतूत कायनात का सिया तरीन किरदार उसका। तो बहरहाल ये तमाम नाम अगर है तो उसमें वो खसूसियात भी हों जो इससे पहले आपने अभी सुनी। अच्छा, अब मुकाम मशवरा में जैसे कि गीबत की जब हमारी गुफ्तगू हुई थी उस वक्त भी इस चीज़ का तस्करा तो आया था कि मुकाम मशवरा में गीबत करनी भी वाजिब हो जाती है और कभी गीबत जायज़ हो जाती है। गीबत वाजिब कब होती है कि जब आप देख रही हो कि नहीं, अब अगर मैंने सही मशवरा से नहीं दिया या मशवरा नहीं दिया और ये वाली जो बातें हैं ये नहीं बताई मैंने उस आदमी की शख्सियत के मुतालिक, तो ये लोग फंस जाएंगे, सारी जिंदगी सर पकड़ के रोएंगे, इस आदमी का कारोबार ठप हो जाएगा, ये शख्स फ्रॉडिया है, ये पैसे लेकर भाग जाएगा, मैंने नहीं बताया तो उस मोमिन का नुकसान हो जाएगा। इस मौके पर तो वाजिब है कि गीबत करें। और कुछ मौके ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ फकत जायज होता है, वाजिब तो नहीं होता, फकत जायज है। मसलन किसी ने आपसे पूछा नहीं, सिर्फ वैसे जिक्र किया कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी फलां रिश्ता आया हुआ, मैं उससे करना चाहता हूं। अब आपको बहुत सी बातें पता है, आप मुनासिब नहीं समझते बताना उन लोगों को, लेकिन ये कि आप देख रहे हैं कि नहीं ये लोग फंस जाएंगे, बहुत बुरे तरीके से इनकी लड़की जो है मुतासिर हो जाएगी, बहुत बुरे लोग हैं, आपको उनकी तमाम बातें पता है। एक तो वो वाला नहीं कि हमारी किसी से जाति दुश्मनी चल रही है और हम अपने अलावा दुनिया में कोई अच्छा आदमी हमें नजर ही नहीं आता तो हर आदमी की बुराई कर रहे हैं और रिश्ते रुकवा रहे हों। नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई शराबी है, कोई मसलन बेनमाजी है, बेनमाजी भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। लोग सोचते हैं कि बेनमाजी कोई बात नहीं, बैंक में अच्छी जॉब कर रहा है, गाड़ी वाड़ी है, कोई मसला नहीं। नहीं, शराबी, बेनमाजी, इस किस्म की, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ही तो बताई जा सकती। तो बहरहाल मुकाम मशवरा में कभी गीबत जायज होती है, कभी गीबत वाजिब होती है। अच्छा, मशवरे में कितनी गीबत कर सकते हैं? सिर्फ उतनी गीबत कर सकते हैं जितना मशवरे से ताल्लुक है जिसका। मसलन आप उतनी गीबत कर सकते हैं, शादी ब्याह के सिलसिले में बात हो रही है तो बस उतनी बात। ये नहीं कि मसलन उसके दादा भी क्या करते थे वो आप बताने लगे, ठीक है, उनके और खानदान की तमाम आप कच्चा चट्टा पूरा खोल के रख दें उनका और सारी बातें जो इस तरह से बयान कर दी है। नहीं, फकत मुकाम मशवरा में मशवरे की हद तक जितना ताल्लुक है फकत उतनी गीबत कर सकते हैं, वो भी अगर उसको बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो रहा हो। मसलन आप ये नहीं कह सकती कि मसलन वो तो पूछ रहा है कि मैं इससे कारोबार करूं या नहीं करूं, आप कह नहीं भाई वो तो गाने भी सुनता है मसलन, इसका क्या ताल्लुक है उससे, या मसलन ये नमाज नहीं पढ़ता, कारोबार करने का बहरहाल नमाज पढ़ने वाला तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो बहरहाल पहला मरहला है तकवे से फैसला करेंगे, दूसरा मरहला है अगर एहतियात मुमकिन हो तो एहतियात करेंगे, तीसरा मरहला था कि मुखालिफतु नफ्स अगर मुमकिन हो तो वो करें। अगर हम मुखालिफतु नफ्स नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि किस तरह से इस बात को इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर चौथा मरहला अहम तरीन था कि इस्तिशारा करें, इस्तिशारा मशवरा लें। अच्छा, मशवरे के अंदर क्या है? जरूरी है कि इन शरायत के हामिल फकत एक आदमी से मशवरा लिया जाए या मुतअद्दिद अफराद से भी ले सकते हैं? जवाब है, मुतअद्दिद अफराद से भी ले सकते हैं, बहुत सारे अफराद से ले सकते हैं, लेकिन वो सब शर्तें होनी चाहिए जो भी आपने सुनी। यानी कुछ में अगर कुछ शर्तें कम हो, मसलन मुत्तकी परहेजगार है, सब कुछ है, लेकिन आपका राजदार नहीं, आकिल है ठीक है, और आपका दोस्त हमदर्द और खैरख्वाह है, लेकिन कोई और शर्त उसके अंदर कम है मसलन। तो शर्तें अगर कुछ अफराद जिसमें सारी शर्तें पाई जा रही हैं और कुछ में कम है, तो फिर तो यकीनन उन अफराद की बात मुकद्दम होगी जिनमें सारी शर्तें। लेकिन अगर इतनी शराइत के हामिल कई अफराद हैं, तो आप कई अफराद से भी मशवरा ले सकती हैं। हाँ, अच्छा, कई अफराद से मशवरा लें तो क्या उन सब शराइत के हामिल अफराद का एक ही आपको मशवरा देंगे? नहीं, उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। यानी मशवरों में जब मुआरजा और टकराव हो जाए, इस्तेशारे में जब मुआरजा हो जाए, तो फिर इस्तेखारे का मरहला शुरू होता। अब आ जाइए उससे अगला, इस्तेखारा। देखा आपने कितनी चलते हुए सवा घंटे में हम यहां पर पहुंचे हैं जो हमारा असल मौजू था। यानी अगर मशवरों में टकराव हो जाए, टकराव उसको नहीं कहेंगे एक तरफ तो कम शर्तें रखने वाले, दूसरी तरफ पूरी शर्तें रखने वाले, नहीं, फिर पूरी शर्तें वाले मुकदम, फिर टकराव नहीं होगा। मसलन पांच अफराद से आपने मशवरा लिया, पांच में सब शर्तें पाई जाती हैं, मुत्तकी परहेजगार, राजदार, दोस्त हमदर्द, खैरख्वाह, सब शर्तें, लेकिन उन्होंने अलग अलग मशवरा दिया, कुछ ने कहा कि हाँ यहाँ पर रिश्ता मुनासिब है, कुछ ने कहा नहीं मशवरा मुनासिब नहीं है। अब फिर आप दरमियानी कैफियत में आ गई। यानी जब मशवरों में टकराव हो जाए, तो फिर इस्तेखारे का मरहला शुरू होता। अच्छा, अब इस्तेखारा क्या है? देखिए, इस्तेखारे के मसले इतने ज्यादा हैं कि उलमा ने पूरी पूरी मुस्तकिल किताबें इस्तेखारे के उनवान पर लिखी, इस्तेखारे के उनवान पूरी किताबें, और अल्लामा मजलिसी ने पूरी एक किताब मफातिहुल गैब के नाम से इस्तेखारे के उनवान पर लिखी। पूरी पूरी किताबों के चैप्टर्स इस्तेखारे के मौजू पर। और एक बात और बता दीजिए कि देखिए, इस्तेखारे के वजन पर अरबी में जितने भी अल्फाज बनाए जाते हैं, उन सब में तलब का एक मफहूम होता है, जिसमें भी अलिफ, सीन और ते शुरू में आ जाए। इस्तेखारा खुदा से खैर चाहना, इस्तेशारा मशवरा चाहना, तलब का एक मफहूम है, अलिफ, सीन और ते जिसके भी शुरू में आ जाए। अच्छा, कुछ हमारे पुराने उलमा ऐसे गुजरे हैं, पुराने उलमा ऐसे गुजरे हैं जो इस्तेखारे तस्बीह को और कुरान को, तस्बीह और कुरान को इस्तेखारे में इस्तेमाल करना हराम करार देते थे। देखिए, बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं। यानी ऐसा ना हो कि आप सोचें कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ा अकायद का मसला है, और अभी आगे चलकर आएगा इमाम खुमैनी से बहुत सारे सवालात भी सिलसिले में किए गए हैं कि आप ये बताइए कि क्या ये किसी का अगर एतिकाद ना हो इस्तेखारे पर तो उसका क्या हुक्म है। अभी मैं आगे चलकर उनका फतवा पेश करूंगा। तो पुराने कुछ फुकहा ऐसे गुजरे हैं जिनकी राय ये थी कि नहीं, तस्बीह के लिए, तस्बीह को और कुरान को इस्तेखारे के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। और मामूली और छोटे नाम नहीं, शेख मुफीद, शेख मुफीद को छोटे आलिम दीन, सैयद मुर्तजा इब्ने इदरीस हिल्ली मौके तूसी, ये कहते थे कि जायज नहीं है इस्तेखारे के लिए कुरान को और तस्बीह को इस्तेमाल करना। देखिए, सब शेख मुफीद जिनको इमाम जमाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, गैबत में तीन खत लिखे और सब में उनको अय्युहल अखुल करीम कह के मुखातिब किया। सैयद मुर्तजा जिनको मौलाए कायनात ने आलमुल हुदा का खिताब दिया था, उनका ये नजरिया है। इब्ने इदरीस हिल्ली वो के शियत में शेख तूसी के बाद इज्तिहाद मुर्दा हो गया था, उनको जिंदा किया इब्ने इदरीस हिल्ली ने। मुहक्किक़ तूसी खुद कितने बड़े मुहक्किक़ के नाम से मशहूर हुए, यानी इनसे बड़ा कोई कहा जाता है कि मुहक्किक़ कोई, यानी जिसको रिसर्च करने वाला जो है, इन जैसा कोई नहीं गुजरा। तो आम आलिम नहीं थे ये लोग, लेकिन वो फिर भी कहते थे, और खास वजूहात थी जो भी आगे चलकर गुफ्तगू में जिक्र भी होंगी। तो सबसे पहले तो एक मसला दिमाग में ये रहे कि ये इतना मुसल्लम सबूत ऐसा मसला नहीं है, ना कोई अकायद वाला मामला है कि जिसकी कोई मुखालफत नहीं हो सकती, या कोई फतवा ऐसा कभी आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे ये तो बर्त क़यामत ढा दिए इन्होंने इस किस्म का फतवा दे के। नहीं, ये पहले भी इस किस्म का मसला रहा है। फिर एक मसला है इस्तिखारे में वकालत का, कि इस्तिखारे के अंदर वकालत, वकालत इस्तिखारे में आजकल के तो खैर सारे जो महाराजे हैं हमारे वो कहते हैं कि रजा की नीयत से हम किसी को भी वकील बना सकते हैं, किसी भी आलिम को, कि भाई हमारे तरफ से इस्तिखारा देख दीजिए। लोग खुद से इस्तिखारा करना नहीं जानते, आलिमों के पास आते हैं। अक्सर उलमा कहते थे कि नहीं, पुराने उलमा वो कहते थे इस्तिखारे में वकालत भी जायज़ नहीं, अगर किसी को इस्तिखारा करना है तो उसका मसला खुद करे इस्तिखारा, दूसरा कैसे उसकी तरफ से इस्तिखारा करेगा। वो कहते अल मौजूदा महाराजे कहते नहीं ऐसा मसला नहीं है, बहरहाल रजा की नीयत से जायज है, इतना साबित शुदा मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी चले चल जाएगा मामला, या तो खुद देखें या किसी और से भी दिखवा सकते हैं, मौजूदा मुज्तहिदीन ये कहते हैं। अलबत्ता अल्लामा मजलिसी ने ऐसे उलमा की पूरी फहरिस्त लिखी है जो कहते थे कि इस्तिखारे में वकालत नहीं होती, और खुद अल्लामा मजलिसी ये फरमाते हैं कि अल्लामा मजलिसी के पास कितना जखीरा था हदीस का, कह रहे फरमाते हैं कि मैंने जखीरे अहादीस में से एक हदीस भी ऐसी नहीं देखी कि लोग इमाम के पास आए हों कुरान लेकर या तस्बीह लेकर के मौला जरा हमारी तरफ से इस्तिखारा देख दीजिए, एक हदीस भी नहीं। तो बहरहाल ये नहीं है कि अगर हदीस नहीं है तो हम हराम करार दे रहे हैं उसको, नहीं ये बात नहीं, रजा की नीयत से जायज है, चले चल जाएगा, दूसरी तरह से भी करवा लें। लेकिन पुराने उलमा जो कहते थे कि जो खुद साहिब मामला है, जिसका अपना मसला है, वो खुद इस्तिखारा करे, किसी और के पास क्यों जा रहा है कि मेरी तरफ से इस्तिखारा कर दो, खुद सीख ले उसको। तो अब देखिए इस्तिखारे का मफहूम क्या है, ये बात याद रख लीजिए कि असल इस्तिखारा जो है वो है तलबुल खैर, खुदा से खैर चाहना। देखिए वैसे तो इस्तिखारा ना किसी वाजिब काम में होगा, मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, इस्तिखारा मना आ गया तो नहीं पढ़ रहा, ये थोड़ी चलेगा। मैं गाना सुनूं या नहीं सुनूं, इस्तिखारा आ गया हाँ सुनिए तो हम गाना सुनने बैठ जाए, ये थोड़ी चलेगा। मैं नमाज से पहले अजान दूं या नहीं दूं, मुस्तहब चीज, इसमें इस्तिखारा कर रहे हैं मना आ गया तो अजान नहीं दे रहे, इसमें नहीं चलेगा। फला काम जो मकरूह है, मसलन नमाज के दौरान थूकना, इस्तिखारा पहले देख लिया, अगर आगे क्या थूक सकते हैं तो हम क्या थूकने लगेंगे दौरान नमाज, नहीं, मकरूहात में इस्तिखारा नहीं होता, उससे वैसे ही बचना है। इस्तिखारा हमेशा होता है मुबाहात में, मुबाह चीज, मुबाहात के अंदर इस्तिखारा होता है। इस्तिखारा जब मुबाहात में होगा तो बहरहाल असली और सही इस्तिखारा ये कि खुदा से खैर चाहते हुए उस काम को कर डाली, ये है बिल्कुल सही तरीन इस्तिखारा, खुदा से खैर चाहते हुए उस काम को कर डालना, ये है सबसे सही तरीन इस्तिखारा। अहादीस जितनी इस्तिखारे के बारे में आई है कम से कम 50 से ज्यादा हदीसें इस्तिखारे के मुतालिक, लेकिन वो सब की सब हदीसें जो हैं वो तलबुल खैर के लिए आई हैं, खुदा से खैर चाहते हुए उस काम को कर डालना, रुकना नहीं है कहीं, परवरदिगार मैं ये काम करने जा रहा हूं तू खैर नाजिल कर। देखिए एक तो ये मुबाहात वाला, लेकिन एक इस्तिखारा ऐसा है अगर वो वाली नियत कर ले तो वो हर वाजिब में भी हो सकता है, हर हराम में भी हो सकता है, हर मुस्ताहिब में भी हो सकता है, हर मकरूह में भी हो सकता है। वो कौन सा है? यही तलब खैर वाला, परवरदिगार मैं क्या करूं, मैं इस गुनाह की महफिल में फंस गया हूं, तू खैर नाजिल कर। ये भी इस्तिखारा है कि परवरदिगार किसी तरीके से ऐसे हालात पैदा हो जाए कि ये जो मेहंदी की तकरीब में मैं आई हूं, जो फिस्क हुजूर की महफिल बनी हुई है, घर वाले सारे हैं मौजूद, मैं अकेली कैसे अपने जाऊं, इस महफिल से कैसे निकलूं, तू खैर नाजिल कर, कोई हालात खुदा ऐसे पैदा कर दे कि मैं यहां से चली जाऊं। तो ये भी एक है जो हराम महफिल के अंदर फंस गए हैं, इस्तिखारा कर रहे हैं, परवरदिगार मैं वाजिब नमाज पढ़ने जा रही हूं, खैर नाजिल कर। तो खुदा से खैर चाहना हर वाजिब काम में हो सकता है, हर मुस्ताहब काम में हो सकता है, हर मकरूह काम में हो सकता है, लेकिन वो जो तस्बीह और कुरान को हम लेकर बैठते हैं अक्सर, वो फकत और फकत मुबाहात में होता है, वो उसमें नहीं चलेगा। मैं करूं या ना करूं, नमाज पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, गाना सुनूं या ना सुनूं, ये नहीं चलेगा। तो इसको कहते हैं तलबुल खैर। और अब इस्तिखारे की कई किस्में, अब हम इकसाम इस्तिखारा पे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्तिखारा किया जा सकता है, लेकिन कौन सा इस्तिखारा? असल इस्तिखारा है खुदा से खैर चाहते हुए उस काम को कर डालिए। तवक्कुल परवरदिगार आलम पर यही इस्तिखारा है, असल इस्तिखारा है ये, जिसको हमने फकत और फकत कुरान और तस्बीह और उसके अंदर मुनसिर कर दिया। लेकिन हम सारी चीज़ें बयान करते हुए जाएंगे और उसकी तफसील में भी जाएंगे। तलबुल खैर, अच्छा आप इस्तिखारे की किस्मों में जो सबसे पहली किस्म है, दुआ मांगकर हिदायत का इंतजार करें, परवरदिगार से दुआ मांगें और हिदायत का इंतजार करें कि परवरदिगार तू इसमें अपनी तरफ से हिदायत को नाजिल फरमा दे। खुदा से दुआ मांगकर हिदायत का इंतजार करें। वो जो ताकीबात में भी आप पढ़ती हैं ना, अल्लाहुम्मा हदिनी मिन इंदिक वाफिज अलैया मिन फजलिक वंशुर अलैया मिन रहमतिक वंजिल अलैया मिन बरकातिक, वो असल में खुद इस्तिखारा है। अल्लाहुम्मा हदिनी मिन इंदिक, परवरदिगार अपनी तरफ से मेरे लिए हिदायत नाजिल फरमा, ये इस्तिखारा है। मसलन जब इज्तमा में होते हैं तो अल्लाहुम्मा हदिना कहते हैं और अकेले जब पढ़ते हैं तो अल्लाहुम्मा हदिनी कहते हैं, तो ये खुद एक इस्तिखारा है। या जो सहीफ़ा कामिला में दुआ इस्तिखारा है चौथे इमाम की, कि परवरदिगार जब मैं कोई काम करने जाऊं और एक काम में दो ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हो, एक काम में तेरी खुशी हो और एक काम में शैतान की खुशी हो, तो परवरदिगार एक काम में तेरी खुशी हो और एक काम में मसलन शैतान की खुशी हो, या एक काम में जो मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तेरी नाराज़गी और शैतान की खुशी हो, तो परवरदिगार अपनी तरफ से हिदायत नाजिल कर दे और मैं वो काम करूं कि जिसमें तेरी खुशी हो और शैतान जिससे जो है नाराहत और नाखुश हो जाए। ये खुद एक इस्तिखारा है, यानी खुदा से दुआ मांगी आपने और हिदायत का इंतजार किया। उसके बाद जब आप दुआ मांगकर हिदायत का इंतजार करेंगे, खुद बखुद आपका दिल एक तरफ झुक जाएगा और अब जो आपके ख्याल में जिस दिल जिस तरफ झुक गया, ये परवरदिगार की तरफ से गोया हिदायत आ गई है, उसके मुताबिक आप अमल कर सकते हैं। ये खुद इस्तिखारे की किस्म है। तो क्या चीज बनी? दुआ मांगकर हिदायत का इंतजार करें। और शहीद दस्ते-ए-गैब शिराज़ी ने जो एक अपनी किताब इस्तेआज़ा में जो एक वाक़िया भी लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जब मदीने से रुखसत हो रहे थे तो कब्र रसूल पर आए और आकर दुआ की कि परवरदिगार जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें अपनी तरफ से मेरे लिए हिदायत को वाज़े फरमा। और उसके बाद फिर कब्र रसूल से जवाब ही आया कि तुमको मसलन करबला जाना है। बहुत से लोग इसे अकीदों का मसला बना लेते हैं जबकि ऐसा कोई मसला है नहीं। तो बहरहाल हमें मफहूम उसका समझना चाहिए कि इमाम की इससे मुराद क्या है। तो यही वाला इस्तिखारा है, दुआ मांगकर हिदायत का इंतजार करें, परवरदिगार तू खैर नाजिल कर, तू मेरे लिए हक को वाजे कर दे। और उसके बाद जब दुआ मांग लेंगी आप और खुद ब खुद आपका दिल किसी तरफ झुक जाएगा, तो आप समझ जाइए कि परवरदिगार की तरफ से आपको हिदायत मिल गई। बस जिस दिल जिस तरफ झुक रहा हो उसकी तरफ, मसलन आपका दिल 70% और 30% दो ख्याल हो गए, पहले 50-50 थे, अब दिल खुद बहुत झुक गया 70% हो गया कि इस काम को कर लो मसलन, और 30% रह गया दूसरा काम को ना करो, तो दिल जिस तरफ झुक गया है बस वो आपके लिए हिदायत है, उसके मुताबिक अमल कर ले, वो इस्तिखारा हो गया आपका। अच्छा ये तो हो गई पहले इस्तिखारे की पहली किस्म। इस्तिखारे की दूसरी किस्म, दुआ मांगकर अपने दिल की हालत को देखें। एक तो इंतजार करें, हो सकता है कई दिन लग जाएं, कई दफा आपके साथ ऐसा हो जाए, कई जरूरी नहीं कि फौरन आपका मसला हल हो जाए, पहले वाला तो उसमें काफी वक्त भी लग सकता है। दुआ मांगकर हिदायत का इंतजार करना है, खुदा खुद ही वाजे कर देगा हालात और वाकयात से कि आपको क्या करना है। दूसरा इस्तिखारे की किस्म है, दुआ मांगकर अपने दिल की हालत को देखें। अहले सुन्नत में सबसे ज्यादा राइज इस्तिखारा यही है। आप जो वो सुनती है ना, इस्तिखारा कीजिए अहले सुन्नत के यहाँ भी इस्तिखारा है, तो उनके यहाँ जो सबसे ज्यादा राइज इस्तिखारा है वो तस्बीह और कुरान को इस्तेमाल नहीं करते इस्तिखारे के लिए, बल्कि ये वाले इस्तिखारे को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दुआ मांगकर इंसान अपने दिल की हालत को देखे, दिल जिस तरफ झुक रहा हो बस वो यही समझे, इसमें फौरी फौरी असर होता है। पहले वाला तो उसमें काफी टाइम लग सकता है हिदायत के इंतजार में, हो सकता है 4-5 दिन तक बात वाजे ना हो आपको क्या करना है, जब भी वाजे हो जाएगी कुछ दिन बाद खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। अच्छा कि मर्जी है खुदा इसमें। अच्छा अब दुआ मांगकर अपने दिल की हालत को देखना, कौन सी दुआ मांगे? दुआ है अस्तखिरुल्लाह बिरहमतिही खियरतन फी आफिया, ये दुआ मांगे। अब आपके दिल की कैफियत बदल जाएगी, हो सकता है जो 50-50% ख्यालात थे, जो शक था वो जन में बदल गया, गुमान में बदल गया, इत्मीनान में बदल गया, अब उसके मुताबिक ही आप अमल करें। इसके लिए कई रिवायतें हैं कि आइम्मा मासूमीन खुद भी कभी इस पर अमल करते थे। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम ने मुझे यमन का गवर्नर बना के भेजा था तो खास हिदायतनामा दिया था जो हर गवर्नर ही को दिया जाता है, एक प्रोटोकॉल है, एक हिदायतनामा साथ था जिसमें ये था कि अली जब भी कोई काम करना इस्तखारा जरूर करना। क्यों? क्योंकि अली मा हारा मन इस्तखारा व मा नदिमा मन इस्तशारा। पैगंबर फरमाते हैं कि अली जो भी इस्तखारा करेगा वो कभी हैरान नहीं होगा, जो मशवरा लेगा वो कभी पशेमान नहीं होगा। मा हारा मन इस्तखारा व मा नदिमा मन इस्तशारा, जो इस्तखारा करेगा वो कभी हैरान नहीं होगा, जो मशवरा लेगा कभी पशेमान नहीं होगा। यानी खुद हिदायतनामा अमीरुल मोमिनीन को पैगंबर ने जो लिखा हुआ दिया था उसमें था कि अली इस्तखारा जरूर करना, लेकिन इस्तखारा कौन सा वाला, अब वो अभी आ रहा। और असूल काफी की भी एक रिवायत है कि हर दौर में एक इमाम का जब वक्त शहादत आता है दूसरे इमाम तक जो तबर्रुकात मुंतकिल होते हैं और कुछ वसीयतें की जाती हैं उसमें एक वसीयत हर इमाम अपने आने वाले इमाम से ही करता था कि इस्तखारा जरूर करना। लेकिन कौन सा वाला, तस्बीह कुरान वाला? नहीं, वही वाला इस्तखारा के तलब खैर खुदा से चाहते हुए उस काम को करना। ये जो दुआ है अस्तग़फिरुल्लाह बिरहमतिही खियरतन फी आफिया कितनी बार पढ़ी जाए उसके बाद अपने दिल की हालत को देखा जाए। उलमा फरमाते हैं कि आम कामों के लिए 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ें और फिर अपने दिल की हालत को देखें, और बड़े कामों के लिए 101 दफा इस दुआ को पढ़ें और फिर अपने दिल की हालत को देखें। दिल जिस तरफ झुक रहा हो उस काम को आप कर लीजिए, और ना करने की तरफ झुक रहा हो तो ना कीजिए, करने की तरफ झुक रहा हो तो काम को कर लें। यानी शक से मामला आगे बढ़ जाए, जन की तरफ चला जाए मामला, एक पहलू ज्यादा हो जाए, 80%, 20% हो जाए, 70%, 30% हो जाए, इस तरह से अगर आप कर लें तो ये आपको काफी इसमें फायदा होगा। और ये मसलन छोटे कामों के लिए 7 दफा, बड़े कामों के लिए 101 दफा इस दुआ को पढ़ा जाए। अच्छा, बड़े काम कौन से? मसलन शादी भी बड़ा काम है, मसलन कारोबार करना एक बड़ा काम है, कहीं नुकसान ना हो जाए, हम कारोबार करने जा रहे हैं तो उसमें फिर 101 दफा। अच्छा, चौथे इमाम की सीरत थोड़ी सी अदद के एतबार से अलग थी। चौथे इमाम जब ये वाला इस्तखारा इस तरह का करते थे तो वो आम कामों के लिए 10 दफा इस दुआ को पढ़ते थे और बड़े कामों के लिए 200 दफा इस दुआ को पढ़ते थे। 10 दफा छोटे कामों के लिए और बड़े कामों के लिए 200 दफा। अच्छा, अब ईसा इब्ने अब्दुल्ला कुम्मी फरमाते हैं, हम छठे इमाम के पास मैं आया और कहा कि मौला अक्सर जब कोई काम मैं करने लगता हूं तो मेरा दिल और दिमाग फैसला नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं। तो इमाम ने कहा, इसमें एक और बात, यानी ये दुआ आप बगैर नमाज के भी पढ़ सकती हैं, बस ये आपने दुआ पढ़ी अपने दिल की हालत को देख लिया। लेकिन अगर ये काम भी कर ले जो इमाम ने बताया तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, अच्छा नतीजा निकलेगा उसका। इमाम ने फरमाया, गवाया कि मौला जब कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, कभी कभार दो मेरे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं तो मैं क्या करूं? इमाम ने कहा, तुम ये करो कि जब भी तुम नमाज के लिए खड़े हो उस वक्त दुआए इस्तखारा पढ़कर अपने दिल की हालत को देखो, यानी मुसल्ले पर आ जाओ, क्योंकि जिस वक्त इंसान बावजू होकर नमाज के लिए मुसल्ले पर आता है तो शैतान उससे दूर हो जाता है। और देखिए, जब भी आप तजब्जुब और तरद्दुद की कैफियत में होती है ना तो आपके दिल में दो तरह के ख्यालात होते हैं। तो जब भी आप मुसल्ले पर आ जाएंगी वजू करके तो आपके दिल में दो तरह के ख्यालात इस वक्त आ रहे थे, रहमानी और शैतानी। تو شیطان جب دور ہو جائے گا تو شیطانی خیال کی پرسنٹیج خود بخود کم ہو جائے گی اور رحمانی خیال کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی، وہ 60% ہو جائے گا، 70-80-90% کی طرف چلا جائے گا، بس تم اپنے دل کو جس طرف جھکا ہوا پاؤ اسی کے مطابق عمل کر لو، وہ استخارہ ہو جائے گا. اور آپ ایک خود یہ کہ ایک ایسی چیز ہے جو خود چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کو بتائی کہ اس طرح سے کرو. اور یہ جو نماز ہے، اگر یہ والی دعا ویسے جو ہے استخیر اللہ برحمتی خیرتن فی عافیہ، اگر آپ نماز سے ہٹ کر پڑھ رہی ہیں، کیونکہ عام طور پہ پڑھ رہی ہیں تو عام طور پہ پڑھ سکتی ہیں نارمل طریقے سے، لیکن اگر آپ یہ نماز میں پڑھ رہی ہیں تو آخری رکعت کے آخری سجدے میں یہ دعا پڑھنی، آخری رکعت کے آخری سجدے میں. عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ سجدے میں جا کر اس آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس دعا کو پڑھیں. اور اگر ویسے تو ہر نماز میں آپ ایسا کر سکتی ہیں، واجب نماز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مستحب نماز ہی ہم کوئی پڑھیں یا نماز استخارہ ہی پڑھیں تو اسی میں ہم اس دعا کو پڑھیں، نہیں، عام واجب نماز میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، مستحب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ دو مستحب نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اس میں پڑھا تو سبحان اللہ کیا کہنا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یا تو آپ نماز شب کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو پڑھیں، یا آپ نافلہ صبح جو 2 رکعت ہوتے ہیں صبح کے نافلہ نماز فجر کے، اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو پڑھیں، تو کیا ہی کہنا، بہت ہی اچھا نتیجہ اس کا ظاہر ہوگا. تو اس دعا کو اس لحاظ سے پڑھا جائے. 5 منٹ کا آپ لوگوں کو وقفہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو اپنی اور آگے بڑھائیں گے. تو ویسے میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو 5 بجے تک بیٹھ کے سما خراشی کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید تھوڑا سا ٹانگ ہاتھ چلانا زیادہ فائدہ مند ہو جائے. تو یہاں پر ابھی ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. کچھ آپ کے لوگوں کے سوالات بھی اگرچہ آ گئے ہیں، لیکن میں ابھی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں فی الحال. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہماری آگے بڑھے گی تو ہم اس پہ آگے بھی بات کریں گے. وصلی اللہ علی محمد والہ طیبین الطاہرین. 5-7 منٹ بعد میں واپس آتا ہوں.